భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. हरे कृष्णा. तो सबसे प्रथम मैं गौरांग विहारी प्रभु को निवेदन करता हूँ कि वो आदरांजलि अर्पण करें. और उनके पश्चात श्रीमान वृंदावन प्रसाद प्रभु तैयार रहेंगे.
हरे कृष्णा. तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन. तो हम सोच रहे थे प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में क्या योगदान है. तो प्रभुपाद जी अपने जीवन के माध्यम से बहुत कुछ सिखाए हैं हमको. तो हम सोच रहे थे प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सारी पुस्तकें दी हैं, रात रात भर जग के उनको संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में लिखा है, लेकिन उसके अलावा हम सुनते हैं प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उनकी फिलॉसफी के बारे में कि कैसे भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है. लेकिन उनके आचरण को अगर देखेंगे तो वो आचरण से एक वैष्णव सदाचार का परिपूर्णता दर्शाते हैं. तो बहुत से ऐसे अगर आप प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुनेंगे तो प्रभुपाद जी के शिष्य जब प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं तो उनकी जो कृष्णा भावनामृत की जो सिद्धांत है उससे तो प्रभावित हैं ही, लेकिन प्रभुपाद जी का जो उनके प्रति आदान प्रदान हुआ उससे बहुत प्रभावित रहते हैं. तो जैसे बहुत सारे किस्से आते हैं तो उसमें से एक किस्सा, जैसे एक प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में जब पहले पहुँचे थे तो वहाँ पे एक मिश्रा जी करके थे जो उनका भी एक, वो सन्यासी थे बट सन्यास वेशभूषा में नहीं रहते थे, नॉर्मल सूट बूट में रहते थे, लेकिन वो भी प्रचार करते थे, लेकिन वो मायावाद का ज़्यादा प्रचार करते थे. तो प्रभुपाद जी जब उनके साथ रहते थे कुछ समय तो प्रभुपाद जी और उनके बीच में संवाद होता था. तो प्रभुपाद जी कृष्णा भावनामृत का संवाद प्रकट करते थे तो उनके बीच में थोड़ा अनबन सिद्धांत को लेकर होता था. तो जो मिश्रा जी थे उनका एक योगा स्टूडियो था, वहाँ पे कुछ लोग आते थे उनके लिए, वो क्लासेस लेते थे. तो प्रभुपाद जी उनको प्रभुपाद जी को वो बोलते थे आप कीर्तन कीजिए, तो प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे और वो उनको मतलब कुछ बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था कि प्रभुपाद जी बोलेंगे तो वैष्णव सिद्धांत को अपना लेंगे. तो कुछ समय बाद प्रभुपाद जी बोले कि इधर कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर जाके बावरी में और फिर 26 सेकंड एवेन्यू में चालू किया. लेकिन एक और किस्सा बोलते हैं कि उस समय मिश्रा जी काफ़ी बीमार पड़ गए थे, उनका हेल्थ ठीक नहीं था. तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये तो मायावादी है जल्दी मर जाएगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं सोचे प्रभुपाद जी. तो मिश्रा जी खुद बोलते हैं मेमोरीज में कि प्रभुपाद जी पर्सनली उनके लिए कुकिंग करते थे अपने हाथों से और भगवान कृष्ण का प्रसाद उनको खिलाते थे और बोलते थे उनके प्रभुपाद जी की जो कुकिंग, प्रभुपाद जी का प्रेम के वजह से वो जल्दी तंदुरुस्त हो गए. तो ये एक वैष्णव का हृदय है कि प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने, जब उनके आप लेक्चर सुनेंगे या उनका कन्वर्सेशन सुनेंगे, वार्तालाप सुनेंगे भक्तों के साथ, लेकिन आचरण में उनका वैष्णव सदाचार बहुत परिपूर्ण था. तो वो आचरण बहुत प्रभावित करता है. एक और किस्सा याद आ रहा है कि आई थिंक एक बार यमुना माता जी लिखते हैं उनके पुस्तक में, तो यमुना माता जी प्रभुपाद जी के साथ जब भारत में पहली बार आए थे तो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य प्रभुपाद जी के साथ अलग अलग जगह पर जा रहे थे और हरे कृष्णा के कार्यक्रम कर रहे थे, तो आई थिंक शायद पंजाब में हुआ था ये, अमृतसर में, तो माता जी को काफ़ी बीमार पड़ गए थे, तो उनको शायद कुछ तो बीमार मलेरिया ऐसा कुछ तो हुआ था, टाइफाइड, तो काफ़ी बीमार थे। फिर सर्दी भी था, तो जैसे धर्मशाला में कुछ ऐसे क्लोजेट बने होते हैं, तो उसमें माता जी अंदर सो रहे थे, इतने बीमार थे वो। तो फिर जब सो रहे थे तो प्रभुपाद जी ने पूछा वेयर इज़ यमुना, एक किसी भक्त को, यमुना माता किधर हैं, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा वो बीमार हैं। तो प्रभुपाद जी कार्यक्रम होने के बाद स्वयं उनके जो रूम है उसमें आते हैं और पूछते हैं यमुना किधर हैं, फिर जाते हैं देखते हैं, अरे वो तो बहुत ही तकलीफ़ में है, ऐसा कपकपी भी है उनको। तो प्रभुपाद जी बड़े ही प्रेम से कंसर्न से बोलते हैं, अरे आप इधर क्यों हैं, तो चलिए। तो प्रभुपाद जी आई थिंक अपने ही रूम में उनका व्यवस्था करते हैं, और प्रभुपाद जी पूरी तरह, प्रभुपाद जी खुद भी फार्मासिस्ट थे, तो उनको पता था कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, तो उनको भक्तों को बोलते हैं उनको ये दवाई दीजिए, ये प्रसाद दीजिए, और फिर प्रभुपाद जी उनका कैसे देखभाल करते हैं। तो वो जो आचरण है वैष्णव सदाचार का, वो बहुत प्रभावित करता है। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हम सीख सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसे हम भी जो वैष्णव सिद्धांत है उसको समझें, साथ ही साथ जो वैष्णव सदाचार है वो भी अपने जीवन में अपना के एक आदर्श भक्त के, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके पद चिन्हों पर हम चल सकें। हरे कृष्ण।
धन्यवाद गौरांग विहार प्रभु। वृंदावन प्रसाद प्रभु के पश्चात रूप सनातन प्रभु तैयार रहेंगे।
शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अच्छा तुमच्या या डिसअपिअरन्सला सुद्धा, तुमचा अपिअरन्स असो किंवा डिसअपिअरन्स असो, मनामध्ये एक आनंदाची लहर असते, कारण की वैष्णव ज्यावेळेस ह्या जगामध्ये येतो त्यावेळेस सुद्धा तो लोकांना आनंद प्रदान करतो, आणि तो या जगातून जातो त्यावेळेस सुद्धा तो लोकांना आनंदच प्रदान करत असतो, कारण की त्याच्या अस्तित्वाच्या वेळेस तो जो मेसेज सगळ्यांना देऊन जातो तो मेसेजच नंतर कितीतरी पिढ्यानपिढ्या लोकांना आनंद प्रदान करणारा असतो, म्हणून त्याचं डिसअपिअरन्स सुद्धा हा आनंदोत्सवच असतो। मी जवळजवळ 20-22 वर्ष मागे जाईन, ज्यावेळेस मी पॉलिटिकल सायन्समध्ये ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होतो, आणि नुकतीच तुमची पुस्तकं वाचायला घेतली होती, त्यामुळे एक थोडीफार फिलॉसॉफीची एक किनाराशी डेव्हलप होत होती की असं असं जीवन असलं पाहिजे, पण त्याला काही असा अनुभवाची आणि अशी शिदोरी नव्हती, ते त्यातल्या त्यात पुस्तकी ज्ञान होतं। तर त्यावेळेस कार्ल मार्क्सचा अभ्यास करत असताना, गांधींचा अभ्यास करत असताना, इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सचा अभ्यास करत असताना, त्यात जिथे जिथे कुठे काही कमतरता जाणवायची ना, त्या सोडायचं, अरे प्रभुपादांनी हे सांगितलं तर हे इथे होऊ शकतं बघ, आणि ते ज्यावेळेस मी माझ्या मित्रांना सांगायचा प्रयत्न करायचो त्यावेळेस ते मला वेड्यात काढायचे की काही तुम्ही हरे कृष्णावाले काही बोलतात बघ, असं कुठेही हरे कृष्णा तुम्ही टाकून देता बघ त्या ह्याच्यामध्ये। आणि त्यावेळेस असं अशी तत्वज्ञानाची अशी खूप मोठी शक्ती नव्हती की बा त्यांना असं खूप चांगल्या पद्धतीने समजून सांगू, पण नंतर प्रभुपाद ज्यावेळेस जीवनात पुढे गेल्यानंतर हेच सगळे मित्रांनी, आमची सगळ्यांची लग्न एकाच वेळेस झाली त्यातल्या त्यात 2-3 वर्षाच्या दरम्यान, मग बघतो की त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये जी काही फिलॉसॉफी यूज केली होती त्यानुसार हार्डली पहिल्या 2-3 वर्षांमध्ये अर्ध्याच्या वरती लोकांचे डिवोर्स होऊन गेले। आणि आज आपण बघतो की आमच्यासोबत ज्या भक्तांची लग्न झालेली आहेत ते सगळं त्यांच्या बायकांना घेऊन आज तुमच्यासोबतच इथे अपिअरन्स अँड डिसअपिअरन्स साजरे करू शकतात। तर खूप चांगलं केलं प्रभुपाद तुम्ही की तुम्ही जी फिलॉसॉफी दिली ना ती फक्त सॅफ्रनसाठी नव्हती, ती प्रत्येकासाठी होती, कारण की जर तसं केलं असतं ना तर इथून व्यासाचं नाव बसून ते लेक्चर्स खूप आवडली असती लोकांना, त्या लेक्चर्ससाठी खूप लोकांनी टाळ्या पण वाजवल्या असत्या। पण ज्यावेळेस व्यासासनाच्या बाजूला म्हणजे श्रोतृवर्गाकडे जर का लोकांनी बघितलं असतं आणि विचारलं असतं की तुमच्या जीवनात काय फरक पडलेला आहे, आणि ते जर का उत्तर कमी आलं असतं किंवा झिरो आलं असतं तर आपण आजपर्यंत इथे टिकलोच नसतो। त्यामुळे तुमचं कर्तृत्व, माणसाचं कर्तृत्व मोजतात ना, खऱ्या अर्थाने तुमचं कर्तृत्व आहे की आज एवढ्या वर्षांनंतर सुद्धा तुमच्याबद्दल प्रशंसा करणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढती आहे, आणि ती प्रशंसा अशी खोटी किंवा कागदी नाही आहे, तर त्या प्रशंसेच्या मागे खूप मोठा ग्रॅटिट्यूड आहे. त्या प्रशंसेच्या मागे एक इच्छा आहे की ज्या व्यक्तीने आमच्या जीवनामध्ये एवढं परिवर्तन घडून आणलेलं आहे त्या व्यक्तीसाठी आपल्या आपल्या स्थलकाल परिस्थितीनुसार आपल्या शक्तीनुसार मला काहीतरी करायचं आहे. आणि हा एकमेव विचार मला असं वाटतं इस्कॉनच्या प्रत्येक भक्तामध्ये असतो. तो बदल घडवण्यासाठी तो त्याच्या हृदयापासून जो काही प्रामाणिक प्रयत्न करत असतो, आणि तो प्रयत्न इतका प्रामाणिक असतो आणि तो तुम्हाला आवडतो, आणि म्हणूनच तुम्ही जीवी सारखं म्हणा किंवा इस्कॉन सारखं म्हणा इतकं सुंदर प्रारूप त्याचं सगळ्यांना प्रदान करता. तर आजच्या ह्या दिवशी मी हीच प्रार्थना करतो की असे सुंदर आणि चांगले बदल हे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये घडो, आणि त्या अनुभवांची शिदोरी त्यांनी सगळ्यांना वाटो. श्रील प्रभुपाद की जय.
धन्यवाद वृंदावन प्रसाद प्रभू. त्यांच्या आयुष्यात त्यांच्या अनुभवानुसार त्यांनी सांगितलं की कसे श्रील प्रभुपाद त्यांचं जे तत्वज्ञान आहे सर्व लोकांसाठी लागू आहे. तर आता रूप रघुनाथ प्रभू और उनके पश्चात मैं निवेदन करता हूँ लक्ष्मण प्राण प्रभु तैयार रहे.
श्रील प्रभुपाद की. श्रील प्रभुपाद आज के दिन पे जो आपका तिरुभाव दिन है उसके अवसर पर मैं कुछ चीज़ों के ऊपर सोच रहा था, तो उसमें जो है दो चीज़ें है जो मैं प्रोमिनेंटली बताना चाहता हूँ कि अपने जो इस्कॉन संस्था स्थापन किया है एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी अब बाहर देखेंगे कोई इंडस्ट्री बनाता है कोई बड़ा बिजनेस बनाता है तो उसके लिए लोगों के पास वो जो व्यक्ति बनाता है उसके पास बहुत सारे गुण की आवश्यकता होती है. जैसे कि आप देखेंगे आपने जो इस्कॉन संस्था स्थापन किया है तो मैं बहुत सारे चीज़ों को याद करता हूँ कि जैसे कि आपको एक रिपोर्टर ने लंदन में पूछा कि आप लंदन में आए हैं हमारे पास हमारा धर्म है सब कुछ है फिर भी आप यहाँ पे हरे कृष्णा संस्था क्यों स्थापन कर रहे हैं. तो प्रभुपाद जी का जो गुण है ओके तो उसमें प्रभुपाद जी ने जैसे कि सवाल का उत्तर देते हैं प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं. तो प्रभुपाद ने वो टाइम पे जो सवाल उनके सवाल का उत्तर दिया वो एक बहुत अविस्मरणीय है कि जिससे भी वो सवाल सुन के बहुत लोग उनको अपना जीवन में परिवर्तन करते हैं. तो प्रभुपाद ने वो टाइम पे उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है कुछ ये करने के लिए मैं आपको भगवान कौन है वो सब बताने के लिए आया और खास करके आप ब्रिटिश लोग भारतवर्ष के ऊपर जो 150 साल राज्य किया है तो उसमें आपने भारत को बहुत लूट के सब कुछ लेके आए लंदन बट एक चीज आप भूल गए जो है कृष्ण भक्ति वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ. तो वो प्रश्न उत्तर सुन के वो रिपोर्टर को बहुत खुशी हो गई. और एक देखा जाए प्रभुपाद की जब भी कोई एक संस्था बनाता है कोई ये करता है तो उसको बहुत मेहनत करता है बट और उसको लाइक जैसे कि आपने जो संस्था बनाया है कि आई रिमेम्बर वन थिंग कि दैट जब भी आप जब ये करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि प्रभुपाद मतलब उनके टेबल कोई एक व्यक्ति बड़ा रहेगा उनके टेबल के ऊपर बहुत कुछ रहेगा चीज़ें बट आपके टेबल के ऊपर मतलब लाइक एक पेन और एक पेपर रहेगा. तो इतना करने के बाद भी आपने इतना बड़ा संस्था बनाया. और प्रभुपाद और एक बात है कि जो स्पिरिचुअल हमको दिया है आपने इस्कॉन संस्था और जैसे कि गोवर्धन इको विलेज जहाँ पे भक्त लोग आते हैं और अपना आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो ये सब सबके लिए हम आपके लिए आभारी है. जय श्री प्रभुपाद की.
धन्यवाद रूप सनातन प्रभु. श्रीमान लक्ष्मण प्राण प्रभु और उनके पश्चात शिवानंद श्याम प्रभु तैयार रहे.
हरे हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए हमारे पास पात्रता नहीं है, फिर भी वासुदेव प्रभु ने सुबह बोले कि आपको बोलना है तो प्रयास करूंगा। तो भारत में पहले सिर्फ ब्राह्मण ही प्रचार कर सकते थे, और जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसके बारे में बोल सकते थे पहले, लेकिन श्रील प्रभुपाद के प्रचार की वजह से अभी भारत में सबका ब्राह्मण दीक्षा हो रहा है इस्कॉन में। तो अभी यह हमारे पर बहुत बड़ा कृपा है श्रील प्रभुपाद की कि हम इस्कॉन में आने के बाद ये नहीं पूछते किसी की आपका कौन सा जात है, कौन से धर्म से आप आए हैं, तो बस हरे कृष्ण जप करते हैं और श्रील प्रभुपाद के जो भी नियम हैं वो जो फॉलो करते हैं उनको हम शुद्ध भक्त मानते हैं, भक्त मानते हैं। तो पहले ये सिर्फ ब्राह्मण ही प्रचार कर सकते थे, ब्राह्मण ही पूजा पाठ कर सकते थे, तो ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन श्रील प्रभुपाद की वजह से आया है। और जो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो परंपरा है, मतलब हम सब जब भी दिसंबर महीना आता है तो हम पूरे उत्साह के साथ पूरे इस्कॉन के भक्त श्रील प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखे हैं, मतलब रात रात जग के एक डेढ़ घंटा ही सिर्फ प्रभुपाद सोते थे और रात को ग्रंथ लिखते थे अपने खून से, जैसा लिखा है वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने इतने 70-80 ग्रंथ दिए हमको। और वो ग्रंथों को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तभी हमको क्या सही है क्या गलत है पता चलता है। जैसे कि भारत में तो सभी देवता की पूजा करते हैं लोग, 33 कोटि की देवता की पूजा करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने अव्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं वो बताए। हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति क्या है और अव्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद की वजह से ही हमको पता चला है। तो जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे उधर, तो एक भक्त ने उनको पूछा कि उधर सब सूट बूट कोट वाले सब एजुकेटेड लोग हैं, आप एक धोती कुर्ता पहन के उधर जाके आपका कौन सुनेगा उधर, तो आपको कम से कम पैंट शर्ट डालना चाहिए, कोट डालना चाहिए, ऐसा करके आप जाएगा तो कोई सुनेगा। तो प्रभुपाद ने सिर्फ उनका सुना, लेकिन जब वास्तव में जब बाद में जब प्रभुपाद ने प्रचार किया और हजारों लोग लाखों लोग जब भक्त बन गए, तो श्रील प्रभुपाद ने खुद का ड्रेस चेंज नहीं किया धोती कुर्ते का, तो पूरे दुनिया के भक्तों को धोती कुर्ता पहना के नचाया हम सबको, और ये ज्ञान हमको दिया उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने। तो ये जो गोवर्धन इको विलेज का जो प्रोजेक्ट है, तो ये भी श्रील प्रभुपाद की आंतरिक इच्छा थी कि इधर प्रति वृंदावन, जैसे कि जब भक्त इस्कॉन के जाते हैं यात्रा में तो बहुत देखने को मिलता है बाकी, फिर भी इधर एक ऐसा जिसमें एक शुद्धता हो, आने के बाद एक गेट में एंट्रेंस आने के एंट्री जब होता है किसी भक्त का, तो आने के बाद बैंड दिया जाता है, और जब गोल्फ कार्ट से जाते हैं जब वृंदावन का, तो उनको पूरा ऐसा प्रभुपाद की इच्छा था। तो ये गुरु महाराज ने ये पूरा किया, और मुझे भी उधर थोड़ा श्री गुरुचरण प्रभु की कृपा से इधर आने का मौका मिला। तो श्री गुरुचरण प्रभु जी मुझे बहुत बार पूछते थे कि आपका आने का इधर पक्का है ना, तो मैंने हर बार उनको बोला कि 100% मैं आऊँगा और इधर मतलब सेवा करूँगा, तो मुझे भी आप सब शुद्ध भक्त के साथ में सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा भाग्य है। जैसे कि गौरांग प्रभु, उनका मैं प्रवचन सुनता था, तो अभी उनके साथ में ही सेवा करने का मौका मिला है उनके मार्गदर्शन में, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। हरे कृष्ण।
धन्यवाद लक्ष्मण परायण प्रभु। शिवानंद श्याम प्रभु उनके पश्चात बरसाना कुमारी माताजी अगर तैयार हैं।
हरे कृष्ण। लक्ष्मण प्राण प्रभु वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ श्रील प्रभुपाद स्प्रेड दिस मिशन विदाउट एनी बाउंड्रीज नेशन और this also I written based on Prabhupada's compassion. Prabhupada, how he compassionately preached and Lord is Atmaram, devotee is also Atmaram by serving his lotus feet. But they taken up so much hardships to spread this, you know, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Ocean of love flooding the world, every town will lay, spreading Krishna Bhakti all over the world, mercy rain fall everywhere, falling on the ground, falling on the barren land, fertile the ground, flower and fruits everywhere, beautifying the world, illuminating the people, spreading joy to everyone. Ocean of love flooding the world, every town will live, spreading Krishna Bhakti all over the world, mercy rain fall everywhere. Without discrimination, many rivers coming, joining in the joyful ocean. Heart is compassion, expecting everyone without any qualification. Fresh cooling water, crystal clear nature, nourishing spring water. Knowledge is giving strength to people, overcome all misery. Ocean of love flooding the world, every town will live, spreading Krishna Bhakti all over the world, mercy rain fall everywhere. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Pond is fulfilling all type of needs, your books are giving all knowledge. Ganges like enthusiasm, short period, fulfill the spiritual mission. Krishna mercy clouds, showering fallen souls, by your auspicious gland. Transcendental qualities, very, very deep, reflection spiritual world. Your karuna is creating spiritual fever to everyone, all anathas goes away. Your qualities are endless, no boundaries, transform all our life. Ocean of love flooding the world, every town will lay, spreading Krishna Bhakti all over the world, mercy rain fall everywhere. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. यावन्निर्कायरतमात्मविशोपकल्पं दत्ते गिरीष्टचरणाचनया निशातं ज्ञानाशिमच्युतबलोदददष्टशत्रो स्वानन्दतुष्ट उपशान्तमिदं विजह्यात् यत्पादसंशयासूतमुनयो प्रशमानया सद्य पुनन्ति उपशिष्टा स्वर्धुनि अपोनुसेवया। जय श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू। हरे कृष्ण।
जय हो। धन्यवाद शिवानंद श्याम प्रभु। तो जैसे श्रील प्रभुपाद अपने पोएट्री के अंदर संस्कृत के भागवतम के श्लोक डालते थे, वैसे उनके ही पद चिन्हों का अनुगमन करके शिवानंद श्याम प्रभु अंग्रेजी पोएट्री में भी उसमें भागवत के श्लोक डाल रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आप ये सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। तो बरसाना कुमारी माता जी तैयार हैं, और बरसाना कुमारी माता जी के पश्चात श्रीमान बालाजी गोविंद प्रभु तैयार रहे।
हरे कृष्णा, डियर श्रील प्रभुपाद, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। ये बात 1977 बिगनिंग की है, जब भी प्रभुपाद बहुत बीमार थे, बॉडी वॉज वेरी वीक एंड फ्रेजाइल, फिर भी प्रभुपाद को लंदन जाने का इच्छा था। प्रभुपाद बॉम्बे टेंपल में थे, तभी एक प्रीस्ट बेंगलोर से, उनको लगा कि प्रभुपाद को मिलने के लिए मुझे जाना चाहिए, तो वो बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे में आ गए। उनको लगा कि मैं प्रभुपाद को कुछ सजेशन दे दूंगा, तभी बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के आना मतलब बहुत था, इसलिए फिर भी प्रभुपाद को कोई मिलने के लिए नहीं देते थे, लेकिन वो उतना दूर से आए इसलिए उनको मिलने के लिए दे दिया था। तो प्रभुपाद का और वो प्रिस्ट, उनका नाम संपत कुमार भट्टाचार्य, जो बेंगलोर से थे, प्रभुपाद के वेलविशर थे, फ्रेंड, तो उनके बात का एक बातचीत मैं बोलना चाहती हूँ। तो जब ही प्रभुपाद के बीच में उन्होंने आए, वो बोले कि प्रभुपाद आपका ये पेन देख के मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। सो प्रभुपाद सेड इट्स ओके, दिस वर्ल्ड इज दुखालय अशाश्वतम, फिर भी आपके ऊपर बहुत जन निर्भर हैं, तो आपका सफरिंग उनको भी सफरिंग है। सो प्रभुपाद ने बोला व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो प्रिस्ट को लगा कि मैं एक सजेशन देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मुझे इतना पता है कि वृंदावन टेम्पल में आपकी डीटी है, जिसको सब जन आके फ्लावर ऑफर करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो एक्चुअली पंचरात्र ऐसे बोलते हैं कि जब भी आचार्य ये जग में रहते हैं तो डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सफरिंग हो जाता है। तो उनको लगा था कि मैं प्रभुपाद को बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो प्रभुपाद हर्ड एवरीथिंग एंड सेड यू वांट टू टेल एनीथिंग एल्स, तो उन्होंने बोला नहीं, प्रभुपाद सेड आई नो, मुझे पता है, मैं इसीलिए तो हूँ कि लोग आके मुझे प्रेयर्स करे, ओबेसेंसेस डाले और उनका मैं सफरिंग्स ले लूँ, ताकि वो आराम से निश्चिंत से हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे। और इतना ही नहीं, ये जगत से जाने के बाद भी मैं उनका सफरिंग लेते रहूँगा। डियर श्रील प्रभुपाद, इट इज़ नॉट द फाइबर ग्लास और एनीथिंग, यू आर सिटिंग हियर एवरी डे, वी आर प्रेइंग, पेइंग ओबेसेंसेस ऑल्सो, एंड वी आर गिविंग आवर ऑफरिंग्स और वट एवर, एंड यू आर टेकिंग आवर सफरिंग सो दैट वी कैन चैंट नाइसली। लेकिन ऐसे लगता है कि हम लोगों को सफरिंग ही मालूम नहीं है, तो चैंट करने का अलग से। एक बार इवन हिज होलीनेस राधानाथ महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज आपका फेवरेट स्वीट कौन सा है, तो ऐसे ही महाराज ने बोला कि हलवा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में महाराज ने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्रा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो लेने से बार बार लेने का होता है। सो इट इज़ ट्रू श्रील प्रभुपाद, बट इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो, सो ऑन दिस डे आई जस्ट प्रे दैट लेट मी चैंट हाउ एवर वी कैन अटेंटिवली, ऑफेंसलेसली, एंड एंगेज मी इन सर्विसेज वेर एवर यू। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद बरसाना कुमारी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी जैसे वासुदेव दत्त और उनके मूड में सबका सफरिंग लेना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए।
श्रील प्रभुपाद की जय।
बालाजी गोविंद प्रभु के पश्चात अभिमन्यु प्राण प्रभु तैयार हैं।
एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि आपको सबसे प्रिय क्या है, तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको कि अगर आप कृष्णा को पसंद करते हैं तो ये मेरा सबसे प्रिय ही है। प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को जो एक कृष्णा बुक में एक वर्णन है कि ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी जो इनका जो क्रिएटर है हमारे पृथ्वी का, पूरा यूनिवर्स का, उनको इतना तुच्छ कर दिया जो ब्रह्म विमोहन लीला में, और ब्रह्मा को एक कंपैरिजन दिया है एक जुगनू की तरफ। जुगनू जो है जो लाइट देती है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, लेकिन इट रियली कैन नॉट इल्यूमिनेट पूरा हम लोग का जो जगह, जितना हम लोग का लाइक समझो बल्ब दे रहा है, 100 वॉट का बल्ब है या व्हाटएवर इट इज, जितना वो लाइट दे रहा है, लेकिन जुगनू इतनी छोटी रहती है फिर भी अपना थोड़ी सी जो अपनी क्षमता के हिसाब से अपना लाइट देती है। तो प्रभुपाद जी ने एक 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 वॉरियर एक 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 टीम बनाया है जो सब अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अपनी कार्य से, अपनी अपनी बल से ये जो मूवमेंट जो क्रिएट हुआ है उनको एक एकत्र होके, क्योंकि एकत्र होना, ये कलयुग में एकत्र होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नेचुरल हम लोग सब है कि हम लोग सब सेल्फिश है, हम लोग अपने सेंटर्ड है, अपनों के लिए, अपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए, या अपने ऑफिस के लिए, या हमारे में। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ऐसा एक संस्था क्रिएट किया है जो हम लोग अलग भी है लेकिन साथ में भी है। सो जब डिसीजन लेते हैं, कुछ गंभीर डिसीजन लेना है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ भी लेना है, सब जो इनके जो प्रभुपाद जी को जो वॉरियर्स है, जो GBC बोलते हैं उनको, वो लोग सब आके मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, एक कंसेंसस लेके आते हैं कि ठीक है ये इसका एक सॉल्यूशन ये है, और वो पूरा जो हम लोग का जो मूवमेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी मंदिर में वो उसका इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो एक जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया है कि हम लोग साथ कलेक्टिवली हम लोग आके हम लोग डिसीजन ले लें, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग अकेले डिसीजन लेते हैं, कभी कभी वो गलत हो सकता है, उसके अंदर काफ़ी बार शोषण भी हो सकता है डिसीजन लेने से, लेकिन कलेक्टिवली डिसीजन लेने के बाद हम लोग गलतियां कम कर सकते हैं। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं कल के बारे में बात कर सकता हूं, चाहता हूं, जो प्रभुपाद जी ऑफकोर्स ये जो वृंदावन हम लोग ने क्रिएट किया है, तो कल जब इतने लोग आए थे, लगभग 3,500-4,000 लोग आए थे, तो एक अलग सा एक आनंद महसूस हो गया दिल में कि अभी तो लगभग ये प्रोजेक्ट इधर जो है लगभग 10 साल हो गया है, अभी एक 10 साल 20 साल 30 साल के बाद क्या होने वाला है, कि ये मंदिर हम लोग को पहुंचेगा क्या ये जगह, ये तो एक फंक्शन के लिए इतना लोग आ रहे हैं, तो हम लोग एक अपेक्षा करेंगे कि जैसे जैसे आएंगे रोज इतना 3,000-4,000 लोग आएंगे, और हमारा जो मैनेजमेंट है उनको भी संभालने का क्षमता है अंजुमान में। सो प्रभुपाद जी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग ने आपने हमको हमें मुझे और मेरा फैमिली को इधर रहने के लिए मौका दे दिया है, एक कुछ सेवा करने के लिए भी मौका दिया है, और मुझे मालूम है कि ये मौका हम लोग को आगे भी जितना तक हम लोग का श्वास है तब तक हम लोग को ये मौका आगे दे देंगे। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय।
धन्यवाद बालाजी गोविंद प्रभु। तो अभिमन्यु प्राण प्रभु तैयार रहें, और उनके पश्चात केशव प्रिया माता जी को निवेदन है कि वो आदरांजलि अर्पण करने के लिए तैयार रहें।
इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। 1977 14 नवंबर को प्रभुपाद ने शरीर उन्होंने छोड़ा इस संसार से, तो आज को जो हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं डिसअपीयरेंस डे, सो इट इज 54th 54वां तिरुवाप तिथि। तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि गोवर्धन इको विलेज में हम बहुत सारे गेस्ट आते हैं, नए नए गेस्ट आते हैं, जैसे कि जो गेस्ट हाउसेस में रहते हैं जिनको भक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, तो कभी कभी हमको ऐसा सेवा मिलता है कि उनको कैसे भक्ति के बारे में बताएं, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उनको कैसे दें। अभी जो आए हैं मैं, क्योंकि ये सेवा है तो उसके रिलेटेड जो प्रभुपाद का कैसे प्रभुपाद का जीवनी जो लीला है और उनका जो पास टाइम से कितना मदद करता है उसके बारे में थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो जो गेस्ट आते हैं दो दिन के लिए रहते हैं, अभी वो दो दिन में जिनको भक्ति का ABCD पता नहीं है उनको आपको बताना है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आपको भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा मंत्र जप करना है, भगवत धाम जाना है। तो देखिए कैसे प्रभुपाद हमको मदद करते हैं। तो मैंने बहुत प्रकार का अपना मटेरियल जो माइंड रहता है ना बहुत ट्राई किया, कैसे कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या कर सकते हैं। अंत में मेरा जो साक्षात्कार हुआ है कैसे प्रभुपाद अभी भी हेल्प करते हैं मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो जब हम वृंदावन फॉरेस्ट में घुमाते हैं, सब दिखाते हैं, सबको अच्छा लगता है, जैसे ही उनको गीता का श्लोक बताना शुरू करते हैं, नाम जप ये, तो बहुत मुश्किल होता है बताना, ये जो इन्फॉर्मेशन देना। तो मेरा जो साक्षात्कार है, मैं लोगों को मैं क्या किया, सब घुमाने के बाद उनको मैं अंत में उनको लेके आता था प्रभुपाद का क्वार्टर में, राधा दामोदर में प्रभुपाद के क्वार्टर में। मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत मैंने ट्राई किया, लेकिन ये जब ऑब्जर्व किया मैंने, जैसे ही जो भी रहते हैं डिवोट गेस्ट रहते हैं, जैसे ही प्रभुपाद का क्वार्टर में एंटर करते हैं ना, उनका मूड पूरा बदल जाता है, पूरा सीरियस हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, जैसे उनको लगता है कि सामने प्रभुपाद बैठे हैं। और फिर मैं धीरे धीरे प्रभुपाद का जो लाइफ हिस्ट्री है, ऐसे तो बहुत विस्तृत है लीलामृत, मैं उनको ट्राई करता हूँ कोई 10-15 मिनट में बताने के लिए, खास करके कैसे प्रभुपाद 1922 में उनके गुरु का जो आदेश है कि जब भी आपको जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसको प्रचार कीजिए, फिर 1935 में उनको फिर से आदेश देते हैं राधा कुंड के तट पर, जब भी आपको कुछ भी लक्ष्मी मिलता है आप बस प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण का मंदिर को निर्माण कीजिए। तो देखिए प्रभुपाद कैसे हमेशा एक गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन हमेशा उसको मेडिटेट करते रहते थे, और 1950 में वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, और 1955 में संन्यास आश्रम लेते हैं और आके वृंदावन में इस राधा दामोदर मंदिर में बस जाते हैं, और 10 साल इस मंदिर में रह के पूरा प्रिपरेशन करते हैं। रात को 12 बजे उठ के भागवतम पुस्तक लिखते हैं, जो कि पहली बार इतिहास में ये संस्कृत भाषा में जो वेद था कोई पढ़ नहीं सकता था। आजकल के हम नौजवान जो हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएंगे, कौन पढ़ेगा ये संस्कृत भाषा। प्रभुपाद के कारण पहली बार जो हमारा वेद है, उपनिषद है, भागवतम है, गीता, उसको अंग्रेजी भाषा में उन्हें ट्रांसलेट किया। 10 साल का मेहनत इस रूम में बैठ के 12 बजे उठते थे और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखते थे, जिसके कारण आजकल हम उसको पढ़ पा रहे हैं। फिर 1965 जब हो जाता है, सब कुछ फैसिलिटी था वृंदावन में, सब लोग उनको मानते थे और सब लोग उनका कथा भी सुनने के लिए आते थे, लेकिन प्रभुपाद क्या बोले, अभी पहला वॉल्यूम भागवतम का जैसे ही प्रिंटिंग आ गया अभी मैं वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाऊँगा। तो सीधा बॉम्बे आ गया और सुमति मुरारजी को बोलने लगे कि एक टिकट दे दीजिए, आपका तो जहाज जाता है अमेरिका, मुझे एक टिकट दे दीजिए। वो बोले कि क्यों जाएंगे, 69 साल हो चुका है आपको, हम बोलते हैं कि 70 साल, जिसको 70 साल हो जाता है रिटायर्ड लेके कैसे सेटल होने का प्लान करते हैं, और वो 70 साल के आयु में एक नया कुछ शुरू करने के लिए निकल रहे हैं इंडिया छोड़ के। तो सुमति मुरारजी बोलते हैं कि अरे स्वामी जी मत जाइए, ये उम्र में जाएंगे तो मर जाएंगे, उधर इतना ठंडा बर्फ गिरता है, आपको आदत नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या, मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन प्रयास तो करूंगा, क्योंकि गुरु का आदेश है, मैं बैठने वाला नहीं हूं, अर्जुन के तरह युद्ध करते करते अगर मृत्यु आ जाएगा तो मुझे आनंद आएगा, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। तो सुमति मुरारजी जब देखती हैं प्रभुपाद का जो दृढ़ता, बोलते ठीक है टिकट ले लीजिए। फिर प्रभुपाद जाते हैं जहाज में, जाते जाते दो बार हार्ट अटैक आता है, सोचिए डेथ बेड में रहते हैं, और उस समय भगवान कृष्ण स्वयं उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि बहुत परीक्षा आपका ले लिया है, आप जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हो जरूर उस उद्देश्य आपका पूर्ण होने वाला है, मैं आपके साथ हूँ। और फिर प्रभुपाद का हेल्थ धीरे धीरे रिगेन होता है, और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जैसे ही पश्चिम देश में पहला कदम रखता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं बाएं तरफ मुड़ूँ या दाएं तरफ मुड़ूँ, नया संस्कृति है, नया देश है, नया भाषा है, सब कुछ नया है, फिर भी देखिए प्रभुपाद एक चीज़ के ऊपर उनका विश्वास था, गुरु का आदेश और भगवान का हरिनाम, और टॉमस्किन पार्क में बैठ गए और भगवान का हरे कृष्णा मंत्र जप करना शुरू कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मैं ये धुन में गाता हूँ क्योंकि प्रभुपाद का ये धुन इतना पावरफुल है, जो पहली बार सुनता है ना पूरा उसका हार्ट में पेनेट्रेट कर जाता है। और ये मैं बताता हूँ, देखियो ये पाश्चात्य देश के लोग हैं जिनको राम कृष्णा हरि कुछ पता नहीं है, लेकिन ये लोग ये भगवान का नाम सुन के सब कुछ, जो हिप्पीज हैं जो कि ये चार नियम तोड़ने में माहिर थे, ये सब कुछ छोड़ के यही लोग ब्राह्मण वैष्णव सन्यासी बन जाते हैं और प्रभुपाद को इस्कॉन का जो आगे बढ़ाने का उनका मूवमेंट में सहायता करते हैं। और जो आगे होता है इतिहास है, 12 साल में 14 बार ब्रह्मांड को भ्रमण करके इस्कॉन वो स्थापना कर देते हैं। मैं बोला आप लोग को तो इस कृष्णा क्या है पता है, राम क्या है पता है, अगर आप लोग श्रद्धा से नाम लेंगे तो क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये जब लोग सुनते हैं प्रभुपाद का जीवनी कहानी, ये बहुत बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट करता है उनको। और वहाँ से मैं उनको पूछता हूँ कि आप जब कितना माला करने वाले तो वहाँ से कोई बोलता है एक माला, कोई बोलता है दो माला, तीन माला, तो वहाँ से दे टेक ए काइंड ऑफ ए वाओ बिफोर प्रभुपाद डीटी, देखे मैं हम जप करेंगे। और उसी मुहूर्त हम उनको जप माला भी देते हैं कि लीजिए और आज से आप जप कीजिए। तो मैं देखता हूँ कि प्रभुपाद तो शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो लीला वो कर गए हैं, ये 12 साल में जो लीला कर गए हैं प्रभुपाद ने, वो लीला के माध्यम में आज भी वो प्रचार कर रहे हैं। बस हमको एक निमित्त बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना है और लोगों को उनके साथ कनेक्ट करना है, बाकी सब कुछ वो देख लेते हैं। तो मैंने देखा है, ये मंदिर में देखता हूँ, कभी कभी मंदिर में जो लोग आते हैं तो महाराज बोले, राधना स्वामी महाराज बोलते हैं कि दिस टेम्पल इज नॉट ए ऑर्डिनरी टेम्पल, इट्स ए प्रीचिंग मॉडल। आप अगर इधर कोई व्यक्ति आता है तो उनको पूरा भागवतम कथा दे सकते हो। तो आप ऐसे बोलोगे कि बैठो मैं भागवत कथा करूंगा, कोई बैठेगा नहीं आजकल के जमाने में, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही क्लॉकवाइज आप परिक्रमा करेंगे तो पूरा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद से लेकर 12वां स्कंद तक पूरा स्टोन कार्विंग हुआ है। और कोई मना भी नहीं करेगा, एक एक बताते रहेंगे, लोग सुनते 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 एक घंटा सुनते हैं पूरा, मैं देखा है। और उनको पूरा परिक्रमा घुमा सकते हैं और पूरा भागवतम कथा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पावरफुल प्रीचिंग टूल है। और मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं बताता हूँ, देखिए प्रभुपाद डिक्टाफोन में देख रहे हैं, बाएं तरफ बता रहे हैं भागवत कथा शुरू किया प्रभुपाद, पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा कैंटो, और ऐसा होते होते जैसे 12वां कैंटो आता है, हम बताते हैं देखिए परीक्षित महाराज अभी शरीर छोड़ रहे हैं, तक्षत मारने से पहले ही परीक्षित महाराज शरीर छोड़ चुके हैं और तक्षत आके बस उनका लकड़ी का उनका शरीर को जला रहा है। और इधर देखिए हमारे प्रभुपाद वो भी शरीर छोड़ रहे हैं, तो परीक्षित महाराज श्रवण करके शरीर छोड़ रहे हैं और हमारे प्रभुपाद कीर्तनम करके शरीर छोड़ रहे हैं, वो भी एक महीने से कुछ खाए नहीं कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के देखिए डेथ बेड में क्या कॉन्शियसनेस है प्रभुपाद का। प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह हमारा जीवन एक भागवत के ऊपर हम जी सकते हैं और किस तरह हमारा जीवन अंत समय में छोड़ सकते हैं, भागवत के ऊपर छोड़ सकते हैं, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो लोगों का इतना फेथ आता है भागवतम के ऊपर, मैं बोलता हूँ जाते जाते गिफ्ट सबसे एक भागवतम पुस्तक खरीद के जाना, नहीं तो एक गीता खरीद के ले जाना, नहीं तो कुछ नहीं तो इनका एक छोटा बुक खरीद के जाना, तो आपके जीवन में भी इसका लाभ होगा। और लोग लेते हैं जब हम ये प्रभुपाद का, मैं बताता हूँ प्रभुपाद का जो लीला प्रभुपाद कर गए, आज भी प्रभुपाद उनके लीला के माध्यम में वो प्रचार कर रहे हैं। और इतना तो भरोसा है कि हमको खाली करना है कि उनको उनका जो लीला है, उनका जो कुछ कर गए हैं, जो कि जो उनका प्रवचन दिए हैं, उनके साथ लोगों को हमको कनेक्ट करना है। इतना अगर हम कर पाएं तो बहुत बड़ा ये हमारा प्रभुपाद को देन होगा और इस्कॉन को देन होगा। हरे कृष्णा।
बहुत धन्यवाद अभिमन्यु प्राण प्रभु, बहुत ही उत्साहपूर्ण आदरांजलि। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, तो अभी अभिमन्यु प्राण प्रभु हैं अपने। तो केशव प्रदेव माता जी, उनके पश्चात मैं निवेदन करता हूँ, श्री गुरुचरण प्रभु तैयार रहे।
हरे कृष्णा। प्रभुपाद आपको प्रणाम, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप ही हमें इस संसार से पार ले जा सकते हैं। प्रभुपाद मैं पहले सबके हाथों की कठपुतली थी, जैसा नाचते थे नचाते थे उसी प्रकार मैं भी संसार के बंधनों के कारण नाचती थी। प्रभुपाद अब जब से आपकी शरण में आई हूँ मैं सब बंधनों से विरक्त हो गई हूँ, आपका बंधन मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद इतने आप इतने महान वैष्णव संत होकर भी कितने विनम्र हैं मुझे याद आया आपने जलदूत में भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, ना मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में बहुत विश्वास है। और फिर आपने कितने विनम्रता से कह दिया कि मैं सबसे तुच्छ भिखारी ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद हूँ। इस वाक्य ने मुझे और भी बहुत प्रभावित किया। प्रभुपाद, आज के दिन यही आपसे प्रार्थना है कि इसी तरह मेरा बचा हुआ जीवन इसी तरह विनम्रता से गुजरे और आपकी सेवा करती रहूं, जब करती रहूं। प्रभुपाद, कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ूं तेरी चरणों में, जगह देना।
धन्यवाद केशव प्रिया माता जी। श्री गुरु चरण प्रभु और उनके पश्चात गंगा नारायण प्रभु तैयार रहे।
हरे कृष्ण। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है मैंने आपसे पहले सूर्य देव को दिया था, और वहाँ पे वो वर्णन करते हैं कि ये दिया हुआ ज्ञान सकालेन महता योगो नष्ट परंतप, कि ये आध्यात्मिक ज्ञान था या पद्धति थी, ये मार्ग था, ये नष्ट हो रहा था और नष्ट हो गया है और अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो ये अध्यात्म है, मार्ग है, इसका एक जो सत्य है ये भी बात हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका संबंध मैं प्रभुपाद जी से साथ संलग्न करके बताऊंगा कि भगवान खुद आते हैं तो भी कुछ समय के बाद भगवान ने स्थापन किया हुआ धर्म का धीरे धीरे पतन हो जाता है या नष्ट होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म संभवामी युगे युगे, मैं बार बार आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो अभी ये कंसेप्ट को याद में रखे हुए आप सोचिए कि जैसे हमने अभी प्रभुपाद ने दिए हुए शास्त्र से ये समझे है कि चैतन्य महाप्रभु ये सब भगवान के अवतारों में सबसे महावदन्याय, सबसे कृपालु है और सबसे आसान मार्ग उन्होंने कलित जीवात्मा लोगों के लिए दिया है जिससे भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का धर्म स्थापन किया, लोगों को दिया, लेकिन वो जाने के बाद कुछ समय में ऐसे महावदन्याय अवतार ने दिया हुआ सबसे आसान मार्ग सकालेन महता योगो नष्ट परंतप, हम में से शायद बहुत कम लोग या हमारे पिताजी भी होंगे जो प्रभुपाद जी के समय या उनके पहले थे, या हमारे कोई लोग होंगे उनको चैतन्य महाप्रभु कौन है वो भी पता नहीं थे। तो ऐसे दिए हुए चैतन्य महाप्रभु के मार्ग को पुनर्स्थापना एक संस्था के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने किया। कभी कभी हम ये सुनते हैं कि यदि गौर न होते, लेकिन ये भी जो भजन है कि यदि प्रभुपाद नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु कौन है वो भी नहीं हमको समझता था। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो कल हमने गोवर्धन पूजा मनाया, गोवर्धन पूजा की विधि क्या है शायद वो भी नहीं पता चलती थी। हम जब ये जन्माष्टमी मनाते हैं तो बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है, लेकिन जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति से लेके पूरा जीवन शुद्धिकरण करने का जो प्रक्रिया दिया हुआ है, जो प्रोसेस दिया हुआ है इस्कॉन संस्था में, वो इतना कभी कभी ये इतना आसान तरीके से दिया गया है इसलिए हमको उसका महत्व समझ में नहीं आता। लेकिन आप अगर भागवतम पढ़ेंगे या अलग पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बार प्रश्न आता है कि वो पूछते हैं मुझे एक चीज़ बताओ जो मुझे करना चाहिए। परीक्षित महाराज भी जो 6 प्रश्न पूछे उसमें से सभी आधे प्रश्न तो वही है कि एक चीज़ बताए मैं क्या करूँ। तो या हम उसके पहले देखते हैं सुत गोस्वामी और बाकी शौनकादि ऋषि थे, उसमें यही प्रश्न है उनका कि जीवन का मार्ग क्या है, अंतिम समय पे क्या करना चाहिए। तो कभी कभी शायद हमको बहुत आसानी से प्रभुपाद जी ने जो दिया हुआ पद्धति है साधना भक्ति है उसका महत्व नहीं समझता, इसलिए शायद हम उसको बहुत चीपली ले सकते हैं या बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो आज चलिए प्रभुपाद जी का ये जो योगदान है कि जो कलयुग का जो महावदन्याय अवतार थे उन्होंने दिया हुआ मार्ग को पुनर्स्थापना करके कलयुग के लोगों के लिए आसानी से उनके सामने रखना, यह बहुत बड़ा योगदान है श्रील प्रभुपाद जी का। अगर वो नहीं करते श्रील प्रभुपाद जी, तो शायद कलयुग के लिए कोई आशा ही नहीं होती थी। तो हमारे पास दो पर्याय, क्योंकि अभी श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हुए संस्था में हम कार्य कर रहे, हम अपनी सेवा कर रहे, हम अपना भक्ति कर रहे, तो दो मार्ग है हमारे पास। एक है कि श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ संस्था के अंदर सकालेन महता योगो नष्ट परंतप का भाग बने या ना बने, कि संस्था में रह के श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हुए मार्ग को बनाए रखे हमारे जीवन में, और ये हमारे कार्यकाल में इस दुनिया में उसको बनाए रखने के लिए योगदान करे, ये एक हमारा कार्य हो सकता है। या हम ही उस नष्ट होने के इसमें भाग ले ले और उसमें मदद करें। तो विष्णुजन महाराज जब अपने भक्तों के साथ रात को सोते थे और जब सुबह उठते थे, तो हम अभी अलार्म क्लॉक लगाते हैं सुबह उठने के लिए, तो बहुत सबसे पहले उठते थे, और जब वो उठते थे तो सबको उठाने के लिए दो वाक्य बोलते थे। वो कहते थे, प्लीज गेट अप, वी हैव टू मेक श्रील प्रभुपाद मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जब सुनते थे तो थोड़ा आधे उठ जाते थे लोग, फिर दूसरा वाक्य आने के बाद पूरा उठ जाते थे, वी हैव टू शाइन फॉर श्रील प्रभुपाद, कि हमको श्रील प्रभुपाद के लिए चमकना है। चेतो दर्पण मार्जन ले लो, कोई भी लो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के लिए हमको चमकना है। और कोई भी श्रील प्रभुपाद जी के संस्था के अंदर का कोई भक्त चमकता है तो उसके पीछे कौन चमकते हैं और वो क्यों चमकते हैं, तो ये हमारी जवाबदारी है कि हम चमके और प्रभुपाद जी का जो योगदान है ये आगे जितना हो सकता है उसको हम लेके जाने में योगदान करें। या फिर हम ऐसा कार्य करें उसको सीरियसली न ले जिसके कारण नष्ट, क्योंकि नष्ट होना या योग का डेविएशन को क्या कहते हैं आप, भ्रष्ट होना ये स्वाभाविक है। ये आध्यात्मिक मार्ग को इसलिए भगवान पहले एडवांस में बोलते कि बार बार आके मैं एस्टैब्लिश करता हूँ, तो उसमें उस दिशा में हमको योगदान देना है या प्रभुपाद जी का दिया हुआ मार्ग को हम आगे लेके जाने में योगदान देना है, ये हमारा चॉइस है। तो आज के दिन मैं श्री प्रभुपाद जी यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने दिया हुआ जो मार्ग है इतना इतना महावदन्य है, इतना रेयर है, जिसको हम समझे हमारे जीवन में उसको अपनाए और दूसरों तक पहुँचने का प्रयास करें। श्री प्रभुपाद की
धन्यवाद। श्री गुरुचरण प्रभु, दो हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, योग नष्ट परंतप या फिर वो योग को वापस हमारे जीवन में लाएंगे। तो बहुत धन्यवाद। तो गौरांग दर्शन प्रभु, कृपया आप आदर अंजलि अर्पण करने के लिए आइए। गौरांग दर्शन प्रभु के पश्चात वेणुधारी प्रभु तैयार हैं।
हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। I was just hearing our Abhimanyu Pran Prabhu's presentation, his offering. So he was giving tour around our Radha Vrindavanbari Garbhagriha, and then he would bring the devotees up to Prabhupada's translating Srimad Bhagavatam on the deathbed. So very ecstatically he was sharing that experience. I remembered that shloka, na uttama shloka vartanam jushatam tat kathamritam syat sambhramo antakalepi smaratam tat padambujam. So one who has dedicated his entire life for propagating Krishna consciousness, for rendering service to Krishna, would not run into any bewilderments or misconceptions or any confusions, even at the time of death. So generally, when somebody is leaving the body, so the mind is overwhelmed with so many unfulfilled desires and other kinds of feelings, positive or negative, and it's very difficult to concentrate the mind on something. And Prabhupada is giving such beautiful commentaries, purports, even on deathbed. And one of the last purports that Prabhupada has translated in the 10th canto, 11th chapter, 10th canto, 13th chapter was the last purport given by Prabhupada. So in the 11th chapter, he emphasizes a lot on the process of a hearing. So people miss the opportunity to become happy in life, and people don't know how to become happy in life. So people's lot of effort goes in counteracting the miseries, and that attempt to counteract the miseries is seen as happiness in life. But the real happiness comes by hearing and chanting and discussing the pastimes of Krishna. So that's one thing that we can remember at this point. So although many of us do not have the direct association with Prabhupada, physical association with Prabhupada, and many of us do not have that face-to-face interaction with Prabhupada, still we have profuse access to Prabhupada's association through his wonderful books and also his audio recordings of his lectures, and also the wonderful biographies written by his followers and disciples. So we have a profuse access to Prabhupada's association. So I was just reflecting, the purports written by Prabhupada and the letters written by Prabhupada and the interactions that he had with some of his followers, so they reveal his deep Vaishnava qualities. And last time we were discussing how Prabhupada has personally demonstrated the principles of Srimad Bhagavatam. The shlokas of Srimad Bhagavatam reveal so many spiritual principles, and Prabhupada has demonstrated them in his own personal life. And we can also see Bhaktivedanta purports, the purports that he has written, they reveal his deep Vaishnava qualities. For instance, there is one purport in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, where Dhruva Maharaj ruled the earth for 36,000 years. Then he retired, he went to Badrikashram, and he did some devotional service there. And the Vaikuntha airplane came to take Dhruva to the Dhruva Loka. So Dhruva Maharaj placed his foot on the head of death personified and boarded the airplane, Vaikuntha airplane. And he was about to proceed to Vaikuntha, Dhruva Loka, that suddenly he remembered, I cannot go without my mother. He wanted to jump off from the airplane. He was not able to even proceed for Vaikuntha because he was overwhelmed with gratitude for his mother. So 36,000 years back, my mother Suniti has given me this inspiration to perform bhakti unto Krishna. And without her inspiration, I would not have got this opportunity to board this Vaikuntha airplane. Let me jump off. She's not there. Then Nanda and Sunanda, the Vishnu Dutas who came to take Dhruva Maharaj to Dhruva Loka, so they said that, Dhruva, look in that direction. So in that direction, there is another Vaikuntha airplane is going. In that airplane, Mother Suniti was there. So Prabhupada, he's wonderfully narrating this whole thing. He's translating this pastime. He's giving his word-to-word meanings, translation and all. But in the purport, Prabhupada says that although the spiritual master or the spiritual guide may not be so spiritually advanced, but the strength of the devotional service of the disciple, the guru may go back to Godhead. So Prabhupada very humbly, he says that I don't have so much devotion. I may not be an advanced devotee, but by the strength of my disciple's devotion, maybe I'll get an opportunity to go back to Godhead. So that reveals his deep humility. He's writing. It's not just a poetic way of expressing things, but he's humbly writing it. And after he completed the translation of Chaitanya Charitamrit, at the end he says that if there is any credit for my translation work, that credit goes to my guru Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So that shows how much he is grateful to his spiritual master. So, and he gives all credit also to his disciples. He says that these disciples are the representatives of my spiritual master. They came to assist me in my mission. So all credits to them also. So his humility in not accepting any credit for the work that he has personally done is wonderfully revealed in these writings of Prabhupada. And like this, there are several purports. Like Prabhupada says that the success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. So success of spiritual life is in being obedient to spiritual master and making an honest attempt to satisfy him. And whatever success that Prabhupada has attained after 40 years of struggle is just because of his undeterred determination and loyalty and integrity in executing the desires of his spiritual master. So like that, several golden lines in Prabhupada's purports reveal his inner mood. The Vaishnava qualities that Prabhupada has, we can, although we may not have directly interacted with him, we can see them through his writings, right? His gratitude, his patience, his compassion, how he doesn't reject anyone. Although someone does some mistake, he tries to accommodate them. His compassion, his missionary spirit, how he wants to expand and then see the whole world practicing Krishna consciousness. One last thing. In South India Yatra, it's just the beginning of South India Yatra of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So he goes to Alalnath and he performs great Harinam Sankirtan. And Nityananda Prabhu predicts that, so the whole world will perform Sankirtan like this. So now in front of our eyes, this Sankirtan is happening. People are jumping up and down and dancing and chanting the holy names of the Lord. So whole world will do this. So Prabhupada made it happen. Prabhupada made that prediction true, and he says that because of Nityananda Prabhu's prediction, it has happened. So credit for his activity goes to Nityananda Prabhu. Credit for his activity goes to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and his followers. So his humility, his gratitude, his compassion, his patience, all this can be seen in Prabhupada's purports and also his writings and letters and interactions with other disciples. So Prabhupada was happily staying in Vrindavan, doing his devotional service. There are people who do not want to leave Vrindavan and come even to Mathura also. But Prabhupada was staying in Vrindavan and he was thinking, people in the Western countries, they don't know what it means to live a life without sense gratification. And Prabhupada thinks that, I want to give this Vrindavan to the Western countries. I want to give this experience of Krishna, Krishna consciousness and Vrindavan to the Western countries, because he's, out of his compassion, he was thinking that they should not be deprived of practicing Krishna consciousness. So he was not thinking about his own deliverance or whatever. He's thinking about the whole world. That shows his compassionate spirit. So today is the day where we can remember the glorious contributions of Prabhupada and recommit ourselves to the whole process of Bhakti Yoga and express our profound gratitude to Prabhupada. So with these words, I'll conclude. Jai Srila Prabhupada.
Thank you so much, Gauranga Darshan Prabhu. To Venudhari Prabhu, aur unke paschat main nivedan karta hun ki Ganga Narayan Prabhu tayar rahe.
Hare Krishna. Vrindavan Prasad Prabhujinchi adranchale aikun te mhantle ki Prabhupadancha appearance day aso nahi tar disappearance day aso anandach asto keval doni karyasathi bhaktansathi anandach aahe fish tar aahech karan खास करून आपण जे आनंदित नसतो याचं कारण एकच असतं की व्यक्ती नेहमी एकतर भविष्यकाळाचा विचार करत असतो नाहीतर भूतकाळातले काहीतरी उकारंडे खोलत असतो आणि त्याच्यामुळं स्वतः आनंदित नसतो. तर म्हणून वर्तमान स्थितीत जर आपण जर जगायचं ठरवलं तर निश्चितच आपण आनंदित राहू. आणि प्रभुपादांनी सुंदर असं आपल्याला भगवत भक्ती दिलेली आहे आणि ही भगवत भक्ती करत असताना अनेक प्रसंग येतात आपल्याकडे. प्रभुपादांचं असंच वृंदावनामध्ये भक्तांच्या समवेत असताना एक प्रसंग होता की प्रभुपाद बोलले की भांडी जी आहेत स्वयंपाकाची हे जड पदार्थ आहेत पण एकत्रित आलेत की आवाज करतात. जसं काल आमचा आवाज चालला होता आपण माहीत नसेल सर्विंग टेबलवरती तिथं आमची धावपळ चालली होती. एक बर्तन संपलं तर बर्तन वाजलं की वाटतं अरे संपलं 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 हां आणि भय एक निर्माण होता अरे कसं भक्तांचं सेवा करायची. तर प्रभुपाद म्हणले की बर्तन एकत्र असतील तर निश्चित आवाज करतील पण हे जड पदार्थ आहेत पण आपण तर जीवित बर्तन आहोत ते किती आवाज करतील. तर हे जीवित जे वर्तन आहेत निश्चितच आवाज होणार, पण त्याच्यातून आपल्याला समजायचं आहे की आपलं ध्येय काय आहे. आपल्याला भगवान श्रीकृष्णाच्या सेवेत कटिबद्ध राहायचं आहे, भगवंतांची सेवा करायची. आणि भगवंतांच्या सेवेसाठी आपण जरी एकत्रित आलो असेल तर आपल्याला उद्देश माहिती आहे की कृष्णाला संतुष्ट करण्यासाठी आपण, तर म्हणून यासाठी आपल्याला चैतन्य महाप्रभूने आपल्याला धर्म दिलेला आहे, तो म्हणजे त्रणादपी सुनीचे न तरोरपी सहिष्णु न हमानी न मानदी न कीर्तनी असदाहारी. या भावनेत जर आपण कृष्ण भक्तीमध्ये राहण्याचा जर प्रयत्न करू प्रभुपाद, तर निश्चितच तुम्ही दिलेलं जे कार्य आहे आणि जे भगवत भक्तीचा हा जो मार्ग आहे हा सफल होऊ शकतो. तर आपण नेहमी भगवत भक्तीच्या मार्गावर चालत आहोत, तर हा हरिनाम संकीर्तनाचा धर्म आहे. तणादपी सुनिश्चन आपण एकत्रित आहोत, धर्माच्या रस्त्यावरती आपण चालत आहोत, पण धर्माचा रस्ता आपल्याला दाखवून दिला आहे. पण मंजिलमध्ये जर जायचं असेल तर आपल्याला कर्म पण पाहिजे, तर ते कर्म जर आपले भगवत भक्तीत जर असेल तर निश्चितच आपण प्रभुपादांना संतुष्ट करू शकेल, भगवंतांना संतुष्ट करू शकेल. तर आपण ही कृष्ण भक्ती जी आपल्याला प्रभुपादांनी जी दिलेली आहे, प्रभुपाद पुढे सांगतायत की म्हणतायत की मी तुम्हाला निवेदन करतो की तुम्ही एकत्रित राहून सेवा करण्याचा प्रयत्न करा, सेवा करा. तर म्हणून जरी आपल्याला आजूबाजूला जरी आवाज जरी झाला तरी काय हरकत नाही, प्रभुपादांनी दिलेले हे जे संकीर्तन आंदोलन आहे, ही जी भगवत भक्ती, समजा जर प्रभुपाद जर नसते, जसं आता मगाशी सांगितलं की प्रभुपाद जर नसते श्री गुरुचरण प्रभू म्हणले काय झालं असतं आपलं, आपण एकत्रित आलो असतो नसतो. तर हे आपल्याला एक सुवर्ण संधी मिळालेली आहे. प्रभुपाद मी हे तुमच्या चरणी हीच प्रार्थना करतो की आयुष्यभर तुमची ही सेवा करून हे भगवत भक्तिमय जीवन तुम्हाला मी अर्पण करून सर्व जीवांचा उद्धार कसा होईल याचं पण भान ठेवून भगवत भक्तीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करेन. श्रील प्रभुपाद की जय.
बहुत धन्यवाद वेणुधारी प्रभू. गंगा नारायण प्रभु तैयार रहे.
हरे कृष्ण. प्रभुपाद ने जितने सारे ग्रंथों का अनुवाद और तात्पर्य दिया है उनमें से एक प्रमुख है जो श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अनुवाद करते हुए तात्पर्य लिखते हुए एक जगह पे कहते हैं कि ये जो शास्त्र है, जो भी शास्त्र बताते हैं, दे आर ऑल फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस चीटिंग प्रोपेंसिटीज, तो इसमें कोई खून या अशुद्ध या खराब चीज़ नहीं है. जो भी दिया गया है वो संपूर्ण सत्य है. जो भी दिया गया है वो हर किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक है. तो वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो हर किसी धर्म पंथ पालन करने वाले व्यक्ति अपने अपने धर्म ग्रंथ पाठ करते हैं, किंतु देखा जाता है ज़्यादातर कि स्पेशली हिंदू धर्म पालन करने वाले लोग जो है, हम अपने धर्म ग्रंथ को पाठ नहीं करते या उसका अवलंबन करने का प्रयास भी नहीं करते, और कुछ हद तक इसमें हमारा शिक्षा पद्धति का भी हाथ है, बट अंततः हम सभी उससे उसके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपना धर्म को सही मायने में पढ़ाई नहीं करते, या पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए प्रभुपाद ने जो प्रस्तुत किया है, इवन सबसे प्रथम जो पुस्तक भगवद गीता, उसमें भी जो प्रभुपाद ने कहा है तात्पर्य के माध्यम से, उन्होंने सर्व श्रेष्ठ ज्ञान को उसमें प्रतिपादित किया हुआ है। और केवल प्रभुपाद के भगवद गीता पढ़ के आप सारा ग्रंथों का सार निचोड़ उसमें प्राप्त की जा सकती है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसमें आपको वो सब मिलेगा जो आप के लिए अच्छा है, और उसमें आपको ये सब भी मिलेगा जो यहाँ पे बताया नहीं गया है, मतलब सारे। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वन बुक भगवद गीता। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, और आपको वो भी मिलेगा जो आप अन्य कहीं स्थान पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे समय के अनुसार हर चीज़ नष्ट हो जाता है, समय का एक विनाशकारी शक्ति है, वो हर किसी को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार लोगों के अंदर जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को कैसे प्रचार और उसका संरक्षण किया जाए, वो भी गीता में चौथे अध्याय में कहते हैं कि थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चर एंड थ्रू डिवोशन। तो ये तीन चीज़ों के माध्यम से द नॉलेज कैन बी प्रिजर्व्ड। तो जैसे समय का विनाशकारी शक्ति हर किसी को समाप्त कर देता है, तो उसी का एक प्रावधान भी किया हुआ है कि कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है। किंतु वो संरक्षण जो है उत्तरदायित्व, तो वो व्यक्तिगत हम सब के ऊपर है, हम उसको रक्षा करना चाहते हैं या नहीं। दूसरे माध्यम से प्रभुपाद ने व्यक्तिगत जीवन में अपना कैसे संस्कृति को बचाए रखे। प्रभुपाद के व्यास पूजा का समय था, तो वो एक स्थान पर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किसी ने भी व्यास पूजा का तैयारी नहीं किया हुआ है। सब पाश्चात्य देश के भक्त हैं, उनको व्यास पूजा क्या है मालूम नहीं, गुरु का जन्मदिन कैसे मनाते हैं मालूम नहीं। वैसे देखा जाए तो इस्कॉन में आने से पहले शायद हमको भी नहीं मालूम था, हमको शायद इतना ही मालूम था कि गुरु पूर्णिमा करके कुछ होता है, जब सनातन गोस्वामी का अपीयरेंस डे होता है, तिरुभाव दिन होता है, तो उस दिन हमको कुछ गुरु का सम्मान करना होता है। तो हम हमारे जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनको सम्मान करते हैं या हमारे गुरुजनों को सम्मान करते हैं, हमारा उतना ही उसका जानकारी था। किंतु प्रभुपाद जब देखते हैं कि किसी ने व्यास पूजा का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे कोई पति पत्नी अपने पति पत्नी का जन्मदिन भूल जाए तो पति पत्नी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अरे मेरा जन्मदिन भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए, तुमको इतना भी नहीं याद रहता है। तो ये उस प्रकार का नहीं था, ये उनका क्रोध में भी उनका करुणा था, क्योंकि वो जब क्रोधित होते हैं तो वो अपने शिष्यों के भलाई के लिए क्रोधित होते हैं, कि यदि शिष्य बनकर आप गुरु का सम्मान करना, आदर करना नहीं जानेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है और उससे आपका पतन हो सकता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तो प्रभुपाद प्रश्न करते थे, पुष्प कहाँ है, फूल कहाँ है, प्रभुपाद कहते थे फीस्ट कहाँ है, किसी ने कुछ भी नहीं बनाया, तो प्रभुपाद क्रोधित होकर चले जाते हैं और सबको शाम को बुलाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो सब लोग शाम को तैयारी करते हैं, फिर अगले दिन प्रभुपाद का व्यास पूजा मनाया जाता है। तो वर्तमान की स्थिति में जिस प्रकार व्यास पूजा मनाई जा रही है, वो पहले पहले दिनों में हर किसी मंदिर में ऐसा मनाया नहीं जाता था, क्योंकि प्रभुपाद ने सबको फिर उस समय बताया कि कैसे उसका व्यास पूजा का पालन करना आवश्यक है। तो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार का अलग अलग माध्यम प्रभुपाद ने प्रतिपादित किया। प्रभुपाद ने कहा कि आप इस ज्ञान का प्रचार नाटकों के माध्यम से कर सकते हैं, गीत के माध्यम से कर सकते हैं, कहानियों के माध्यम से कर बच्चों के लिए किया जा सकता है। तो हर किसी एज ग्रुप के लिए उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, किसको किस प्रकार से ज्ञान देने से। इंटेलेक्चुअल क्राउड है उनको एक अलग प्रकार का है, उनके लिए भागवत है, चैतन्य चरितमृत है, साधारण लोग है हरिनाम करिए, तो अलग अलग प्रकार का माध्यम से वो प्रचार प्रसार करने का प्रयास बहुत किया था। तो इसी के प्रभुपाद का जो करुणा, ये सब जो एक्सप्रेशन है, प्रभुपाद का करुणा का एक्सप्रेशन है कि हर किसी व्यक्ति जो या तो मंदिर में आएगा या ना आएगा, जो भी है, तो कैसे ये जो ज्ञान उनके पास पहुंचाया जाए, ये जो सरल, ये जो इतना सारा शास्त्र पढ़ के हम जो निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे, उसको प्रभुपाद ने पूरा सरल करके हमारे सामने रख दिया कि आप केवल आइए, हरिनाम करिए, चार नियम का पालन करिए, भक्तों के साथ में रहिए, भोग लगा के खाइए। तो ये जो सरल पद्धति करके दे दिया और सब हम सब लोग भक्त के संग रहकर इसको पालन करते हैं, तो भक्ति आसान लगने लगता है, तो भक्ति बहुत आनंदमय लगने लगता है। तो जो प्रभुपाद अपने अंदर अनुभूति करते थे कृष्ण प्रेम का, वो खुलेआम मुफ्त में बांट दिया, तो सबको फ्रीली बांट दिया, सबको बिना मूल्य का, बिना कोई कड़ा नियम के साथ बांट दिया। तो वर्तमान की स्थिति में जो देखा जाता है कि संख्या जो कम होती जा रही है प्रैक्टिसिंग लोगों का, स्पेशली मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, तो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये नॉट लिमिटेड टू खाली हिंदू बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते, बट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग डिवोटीज इज मोर इन दिस साइड। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि प्रभुपाद का जो ज्ञान प्रसार किया हुआ है वो उसको अंगीकार करें, उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारे। तो प्रभुपाद के डिसिप्लिनेंस डे के दिन या उनके तिरुवाद डे के दिन ये प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करेगा कि हमने उनका दिया हुआ मार्ग पे चलना आरंभ किया। जय श्री प्रभुपाद।
बहुत धन्यवाद गंगा नारायण प्रभु। तो श्रीमान वासुदेव प्रभु आदरांजलि अर्पण करेंगे, उनके पश्चात श्रीमान माधवानंद प्रभु, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो तैयार रहें।
हरे कृष्णा। सो यस्टरडे ड्यूरिंग द फेस्टिवल, गोवर्धन पूजा फेस्टिवल, सो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग श्रील प्रभुपाद, what was the difficulties he underwent in organizing this entire society. So yesterday we, during the lunch time, you know, we had earlier planned for almost 1500 to 2000 devotees will come for the prasad, and we planned accordingly, and then suddenly at the end of the serving the count was almost 3300 devotees. So within that 3 hours of serving and everything itself, we got tired, and many devotees still not recovered from that fatigue. Then I was thinking, Prabhupada, you know, for at the age of 70 plus, he is organizing the international movement with so many festivals, so many actions, so many meetings. With that, he is translating the books. So it is actually inhuman, means it made humble, means thing. Okay. You still, it shows you where you are. Means just one festival. Today we are running around for today's serving. We are running around for volunteers and everything. So it is amazing. And then the coincidence was that the Govardhan Puja, basically how Krishna protected his devotees from all the calamities and everything. And here Srila Prabhupada has given us that protection. Today we are celebrating his disappearance day, that where we are also getting the same protection through the medium of a society. He has established this society so that we can be in the association of the devotees and protect our devotional service, and we can continue doing our devotional services. But one of the main challenges we face is that dealing with the devotees only. And I was recently reading Srimad Bhagavatam, in that in the 17th chapter, when Parikshit Maharaj was dealing with the Kali. So he says specifically, where does the Kali stays? And, so after catching the Kali personally, and he wanted to kill, then he surrenders. And then Kali asks, give me some authorized places where I can stay. So he says, Abhyartitas tada tasmai sthanani kalaye dadau dyutam panam striyam suna yatra dharmas chaturvita. So these four things, these are the four regulative principles. So in the purport, Prabhupada says that if he sincerely follows these four regulative principles, we can overcome this effect of Kali actually. Because all the time what difficulty we are having in the devotee Sangha also, that dealing with each other, is the propensities of Kali creeping into our attitude or mentality and other things. And it's very nice to even just go through the purport. At the end of the purport, Prabhupada gives that what every leader in the society or the state administrative people has to do, he gives three instructions basically. He says, following in the footsteps of Maharaj Parikshit, it is the duty of the all executive heads of states to see that the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, are established in the state. And how do we do that? He gives a simple formula. That first one is 2 compulsory fasting days in a month, if not more. So even from economic point of view, such 2 fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will also act very favorably on the general health of the citizens. Second, there must be compulsory marriage of young boys and girls attaining 24 years and 16 years of age, respectively. There is no harm in co-education in the schools and colleges, provided the boys and girls are duly married. And in case there is any intimate connection between a male and female student, they should be married properly without illicit relation. The Divorce Act is encouraging prostitution, and this should be abolished. And third one is much, I was meditating on the third aspect. The citizen of the state must give in charity up to the 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state of human society, both individually and collectively. They should preach the principles of Bhagavadam by karma yoga, or doing everything for the satisfaction of the Lord. Regular hearing of Srimad Bhagavadam from the authorized persons of realized souls, chanting the glories of the Lord congregationally at home or places of worship, rendering all kinds of services to the Bhagavadas, engaged in preaching. So this is, I was thinking that, for counteracting the effect of Kali, we are supposed to serve and engage in the service of the Bhagavadas, and we find difficulty there itself. And residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. So for me, the last two was very important, giving an opportunity for us to engage in the services of the Lord, and staying in a place where that the saturation of devotion is there. And we can see that by Srila Prabhupada's mercy, he has personally arranged all of us to have these two. Means even without putting any extra endeavor. And otherwise, it's a challenge for us to practice the four regulative principles our own. But just by doing or sincerely practicing these two principles nicely, we can also overcome the effect of Kali on us. And that is, all the credit goes to Srila Prabhupada. And I'm praying that to the Prabhupada on this day, auspicious day, that we remember these instructions, and being grateful to you eternally for giving us this opportunity to dedicate our life to the movement of bhakti. Thank you, Srila Prabhupada ki.
Thank you so much, Vasudev Prabhu. Shriman Madhavanand Prabhu, aur unke pashchat main nivedan karunga, Shriman Vishwarup Prabhu ki aadar anjali arpan kare.
ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. सो सर्वप्रथम मी क्षमा मागतो सगळ्यांना, करणं प्रभुपादांकडनं, की मी वैष्णव वेशभूषेमध्ये नाही आहे. मी बाहेरून आल्यामुळे आणि प्रभूजींनी सांगितलं बोलायला पाहिजे म्हणून बोलतो आहे. क्षमा करा. मराठीत बोलतोय, चालेल ना? तर प्रभुपादांकडे बघताना अनेक गोष्टी लक्षात येतात. मी आता थोडा बसल्यानंतर विचार केला काय बोललं पाहिजे, तर मी तीन विभागात बोलेन, चमत्कार, साक्षात्कार आणि वारसदार. चमत्कार, सो प्रभुपादांचा चमत्कार जो आहे तो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. जसं प्रभुपादाने 10 वर्षामध्ये जे केलं, जवळजवळ 108 मंदिरं, अनेक फार्म कम्युनिटीज, हजारो शिष्य, इतकी सगळी पुस्तकं, आणि प्रभुपाद 1977 गेले, त्यानंतर 77 आणि ते 23 आणि हे 20 21, म्हणजे आता 44 वर्ष झाली. 44 वर्षामध्ये त्यावेळेला एकटे प्रभुपाद होते. त्यावेळेला ईमेल नव्हतं, मोबाईल नव्हतं, कम्युनिकेशनचे साधन नव्हते, महागाई आजच्यासारखी नव्हती, पण पैसे नव्हते. आणि अशा परिस्थितीत देखील त्यांनी जे केलं ते त्यांच्यानंतर आपण इतके सगळे डॉक्टर, IITians, बिझनेसमॅन्स, लॉयर्स, बिग पीपल सगळे मिळून देखील आपण तेवढं करू शकलेलो नाही. विचार करा किती मोठा चमत्कार. एवढे सगळे हजारो लोक एकत्र येऊन एका व्यक्तीने जे केलं किती वर्षात, 10 वर्षात, ते आपण अजून 44 वर्षात करू शकलो नाही. काय चमत्कार बघा. आत्ता कोविडचा काळ गेला, मी भक्तिवेदांत हॉस्पिटलमध्ये असतो, तिथेसुद्धा आम्हाला चमत्काराची प्रतिती कायम येत असते. ज्यावेळेला वॅक्सिन आलं, तर वॅक्सिन पहिल्यांदा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना मिळायला लागलं, मोठे मोठे हॉस्पिटल्स. आपल्यासारख्या छोट्या हॉस्पिटलला कोण वॅक्सिन देणार? पण तरी देखील आमच्या व्रजसुंदर प्रभू आहेत, डॉक्टर व्यंकट, त्यांनी एक आपल्या वेलविशरला फोन केला, सहज त्याला काहीतरी बर्थडे विश काहीतरी सांगण्यासाठी फोन केला. तर जे काही चांगलं संभाषण झाल्यानंतर तो विचारतो, अरे काय चाललं आहे तुमचं तिकडे, काय कोविडची स्थिती काय आहे? मी लंडनमध्ये आहे सध्या, मी भारतात नाही आहे, पण काय मदत लागेल तर सांगा. त्याने सांगितलं, मदत म्हणजे आम्हाला सध्या आमचा मोठा प्रॉब्लेम आहे की आमच्याकडे वॅक्सिन नाही आहे, आणि कुठल्याच ठिकाणी वॅक्सिन ॲप उपलब्धच नाही आहे. आम्ही कधीपासून ऑर्डर केलेले ते मिळणारच नाही आहेत आम्हाला आता. मग तो माणूस लगेच फोन चालवलं, अरे आधार तुम भक्ती, आम्हाला एक हॉस्पिटल भक्तिविधान उसको दे सकते हो क्या? तो आधार पुण्यावाला त्याच्या बाजूला बसलेला होता तिकडे लंडनमध्ये. तर तो म्हणतो, हां किती पाहिजेत? मग 1 लाख चाहिए. आता 1 लाखसाठी पैसे किती, कोट्यावधी लागणार, तेवढे आमच्याकडे नव्हते. म्हणतो मी स्पॉन्सर करीन. तो म्हणतो, मी तुम्हाला स्पॉन्सर करून, फक्त ते झाल्यानंतर पैसे मला परत करा. मग आम्ही खुश झालो, लगेच ते आधार पुनर्वाल्याला मेल गेला, सगळं झालं. त्यानंतर तरी पण वॅक्सिन यायला तयार नाही, सगळं त्या आधार पुनर्वाल्याने सांगून सुद्धा वॅक्सिन यायला तयार नाही. मग रोज फोन जायचे, त्यांनी फोन घ्यायचे बंद केले, कारण सगळीकडनं प्रेशर होतं ना वॅक्सिनसाठी, पॉलिटिकल प्रेशर, सगळीकडनं प्रेशर. मग एक दिवस ब्रजसुंदर प्रभू असे सकाळी सकाळी बसले होते, परत फोन करायचा प्रयत्न करत होते, तर फोन तिकडे रिंग होत होता, कोणीतरी उचलला पण बोलत नाही कोणी. त्याच वेळेला ब्रजसुंदर प्रभूंची पत्नी देवाला दिवा दाखवून आरती घेऊन जात होती, तर ब्रजसुंदर प्रभू म्हणते, हरी बोल, आरती घेण्यासाठी आपण म्हणू हरी बोल. तर ते हरी बोल तिने ऐकलं, ह्याने आरती घेतली, तिकडचा माणूस म्हणतो, हरी बोल प्रभू. त्या आधार पुनर्वाल्याच्या फॅक्टरीला माणूस म्हणतो, हरी बोल प्रभू. बोले हरी बोल. बोले कौन हो? मैं ब्रजसुंदर दास, मेरा उसने भी अपना कुछ नाम बताया, कोई तो दास. आणि 3 दिवसात त्याने वॅक्सिन पाठवून दिले. सो दिस इज प्रभुपादांचा हा चमत्कार आहे की कोण कुठे कनेक्ट होईल काही भरोसा नाही. आणि असे अनेक चमत्कार तुम्ही सगळ्यांनी अनुभवले असतील. ते चमत्कारांचं बोलण्याच्या आधी एक पुढची गोष्ट आपण लक्षात घेऊ, साक्षात्कार. साक्षात्कार काय आहे? की आपण बऱ्याच वेळेला प्रभुपादांचे चमत्कार बोलतो, प्रभुपाद सायंटिस्ट लोकांना रास्कल म्हणायचे, प्रभुपादांचं कोणाचं चालायचं नाही, प्रभुपाद वॉज अ लायन वगैरे वगैरे आपण सगळं बोलतो. परंतु त्याच प्रभुपादांनी जरी ते नित्यसिद्ध पार्षद असले भगवंताचे, तर ह्या जगामध्ये आल्यानंतर या जगामध्ये जर आध्यात्मिक उन्नती प्रगती करायची असेल तर कशा हाल अपेष्टातून जावं लागतं हे त्यांच्या जीवनामधून आपल्याला साक्षात्कार होतो. गृहस्थाश्रमामध्ये गुरुंची आश्रय स्वीकार केला परंतु पत्नी तयार नाही, कुटुंब तयार नाही, किती मोठं अडचण. त्यातून बाहेर आले, शेवटी कुटुंब सोडलं, संन्यास घेतला. प्रभुपाद स्वतः म्हणतात, 6 वर्ष मी नुसता भटकत होतो एकटा, मला कोणीही माझ्या बाजूला जोडीदार नाही, मला काय काय होतं मला एकट्यालाच माहीत. त्यानंतर 25, 30, 40 वर्षापर्यंत फक्त एकट्याने स्ट्रगल केलं, बिझनेस काढले फेल, काहीतरी करण्याचा स्पिरिच्युअल काहीतरी करायला लीग ऑफ डिवोटीज फेल, व्हॉट एव्हर ही वॉज टेकिंग वॉज फेल्युअर. आणि हे सगळे अपयश पचवून तरी देखील दृढ निर्धार, माझ्या गुरूंची आज्ञा आणि हरिनामावरती पूर्ण विश्वास. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा एकच महामंत्र ही त्यांची सगळ्यात मोठी ठेव. आणि त्यानंतर कसे बसे त्यांना अमेरिकेला जायला तिकीट मिळालं. रस्त्यामध्ये 2 हार्ट अटॅक आला. आता मी आता काही एक छोट्याशा आजारातून बाहेर येतोय, मला माहिती आहे का आजार, मी जनरली आजारी पडत नाही पण यावेळेला आजारी पडलो. पण आजारामध्ये माणसाला मानसिक शारीरिक सगळेपण माणूस खचतो, पण प्रभुपाद खचले का नाही. उतरल्याबरोबर एकटे ते पेन्सिल्वेनियामध्ये राहिले काही दिवस गोपाल अग्रवालकडे कडे, परंतु ती साली अग्रवाल काय म्हणते, आम्हाला माहीत नव्हतं तिकडे जाऊन काय करतील ते न्यूयॉर्कला, त्यांच्याकडे पैसे नाही आहेत. आणि न्यूयॉर्कला सरळ गेले प्रभुपाद, ज्या व्यक्तीबरोबर राहिले तो व्यक्ती त्यांना गळा दाबायला आला. का? कारण तो ड्रग ॲडिक्ट होता. आणि प्रभुपाद घेतल्या सामानानिशी रस्त्यावर आला, माहीत नाही काय करायचं. प्रभुपाद स्वतःच्या शब्दामध्ये म्हणजे कोणत्या एका भक्ताने 125 त्यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त व्हिडिओ काढला, त्यामध्ये प्रभुपाद स्वतःच्या शब्दात म्हणतात की द फर्स्ट इयर ऑफ माय अमेरिका आय वॉज व्हेरी डिप्रेस्ड. आपण डिप्रेस झालं आपल्याला बोलायला वाटत नाही ना, काय मी डिप्रेस, हाऊ कॅन आय बी डिप्रेस, आय एम अ डिवोटी, आय एम अ स्ट्रॉंग डिवोटी, आय कॅनॉट बी डिप्रेस. प्रभुपाद इज सेइंग आय वॉज डिप्रेस्ड फॉर 1 इयर, आय वॉज डिप्रेस्ड. स्वतःच्या शब्दात सांगतायत. ह्या सगळ्या हाल अपेष्टा ज्यांनी भगवंताच्या नामाच्या विश्वासावरती, गुरूंच्या आश्रयाच्या विश्वासावरती काढले ते प्रभुपाद झाले. हा साक्षात्कार आहे. आता असा साक्षात्कार आपल्याला झाल्यानंतर असे चमत्कारी असे आचार्य ज्यांचं जितकं जितकं आपण जीवन बघू आपल्याला आणखीन चमत्कार दिसत होतात, आपल्याला आणखीन त्याचं वैशिष्ट्य कळत जातं की प्रभुपाद कोण होते. कधी कधी कळत नाही आपल्याला प्रभुपाद कोण, हा प्रभुपाद ठीक आहे मूर्ती आहे सुपरफिशियल एक वाटतं, परंतु आतमध्ये गेल्यानंतर कळलं प्रभुपाद इज डिफरंट. जे जगामध्ये कोणीही केलं नाही आजपर्यंत, जसं शंकराचार्यांनी त्यावेळेला जे केलं, त्यावेळी दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सगळीकडे एकच झेंडा, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तसेच रामानुजाचार्य, तसेच मध्वाचार्य, तसेच प्रभुपाद, त्याच प्रकारचं असं योगदान असं प्रभुपादांचं आहे. तर आपलं फार फार मोठं भाग्य आहे की आपण प्रभुपादांशी थोडंफार कनेक्शनमध्ये आलेलो आहोत भक्तांच्या कृपेने. आणि असं आल्यानंतर मग आपण आपोआपच त्यांचे काय झालो, वारसदार झालो. आता वारसदार झाल्यानंतर मग आपलं कर्तव्य काय, कसं आपण प्रभुपादाने जो वारसा दिला आहे, ज्याला हिंदीमध्ये धरोहर म्हणतात किंवा इंग्रजीमध्ये लेगसी म्हणतात, हाऊ डू वी कॅरी ऑन दिस लेगसी? आर वी क्वालिफाईड टू कॅरी ऑन दॅट लेगसी? हा वारसा मी कसा काय पुढे घेऊन जाऊ शकतो ह्यासाठी आपण आपल्याला प्रश्न विचारला पाहिजे. आणि त्यासाठी मी थोडंसं कदाचित तीक्ष्ण बोलेन, सहन करा. काही दिवसापूर्वी बांगलादेशमध्ये आपल्या भक्तांना ठार मारलं गेलं, त्यानंतर प्रभुपादांची मूर्ती जाळली गेली, मंदिर उद्ध्वस्त केलं गेलं. हे फक्त इस्कॉनचंच नाही झालं, इतर हिंदू देवी देवता दुर्गा पूजा चालू होती ते सगळं ध्वस्त केलं गेलं. 1975 का त्यावेळेला जेव्हा बांगलादेश 71 बांगलादेश उत्पन्न झाला त्यावेळेला 26% हिंदू होते, आज 8% आहेत. आणि असं सगळं असताना पहिल्यांदा इस्कॉनवर अटॅक झाल्यानंतर आपण थोडे जागृत झालो, काहीतरी केलं पाहिजे. इतर हिंदूंना एकत्र घेऊन आपण काहीतरी आंदोलनं केली. कलकत्त्यामध्ये गौरांग प्रभू, राधेश्याम प्रभू या लोकांनी मोठं आंदोलन केलं, अनेक ठिकाणी आंदोलन केलं. तरी देखील आतून भक्तांच्या समूहामधून अजूनही असे आवाज येते की ह्याची गरज आहे का, हे करणं योग्य आहे का, आपण याच्यात खरोखर पडलं पाहिजे का? अरे मूर्खानो, प्रभुपादांनी जेव्हा मायापूरवरती अटॅक झाला तेव्हा सांगितलं बंदुकी घ्या आणि हजर राहा, येईल त्याला गोळ्या घाला. प्रभुपादांचा जो वारसा आहे त्याला आपण असं चुकीचं समजू शकत नाही की हे काहीतरी पॉलिटिकल डिस्कशन आहे. नाही, स्वसंरक्षण झालंच पाहिजे. बरेच लोक म्हणतात आपण इस्कॉन म्हणजे एक ब्राह्मणिकल सोसायटी आहोत, आपलं काम ब्राह्मणांचं आहे. परशुराम ब्राह्मण होता, परशुराम ब्राह्मण होता. ज्या वेळेला अत्याचारी लोक, असुर लोक कुठल्याही मर्यादेच्या पलीकडे जातात त्यावेळेला ब्राह्मणांनी पण क्षत्रिय झालं पाहिजे. आणि प्रभुपादांनी हे केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी पण केलं. चैतन्य महाप्रभूंनी असं आंदोलन काढलं, लाखो करोडो लोक ते चांदकाजीवर चालून गेले. चांदकाली चांदकाली मुतला, घाबरला. त्याचा वारसा आपण प्रभुपादांचं नाव घेऊन, प्रभुपाद नेव्हर सेड दिस, व्हॉट नॉनसेन्स. प्रभुपादांचा वारसा, प्रभुपाद कधीही गुरु साधू आणि शास्त्र याच्या विरुद्ध म्हणणार नाहीत. प्रभुपादांचे परपोर्ट्स बघा, प्रभुपादांनी काही काही सेंटेन्स कुठे कुठे सांगितले असतील की वी आर नॉट एक्झॅक्टली हिंदू, व्हॉट एव्हर ही माइट हॅव सेड दिस. पण ज्याला आपण वर्णाश्रम धर्म म्हणतो तोच हिंदू धर्म आहे असं प्रभुपाद स्वतःच परपोर्टमध्ये म्हणतात. प्रभुपादांचं खोलवर अभ्यास करून खोटा सुपरफिशियल वारसा, फक्त जप करा, नाचा आणि बॅक टू गॉडेड जा, अश्रू गाळा, हा आपण थांबवला पाहिजे. कारण केवळ बांगलादेशमध्ये नाही, कझकस्तानमध्ये आपले अनेक भक्तांचे घरं नासधूस करून टाकले. म्हणून आपण जे प्रचार करतो, दुसऱ्यांना ज्ञान देतो, आपण योग्य ज्ञान दिलं पाहिजे प्रभुपादांच्या टीचिंग्सवरती. त्यांचा खरोखर वारसा काय आहे ते सांगितलं पाहिजे. प्रभुपाद कधीही शास्त्रांच्या विरुद्ध सांगणार नाहीत. व्हाय आर वी क्रिएटिंग समथिंग विच इज अगेन्स्ट द शास्त्रज? यू कॅनॉट डिफेंड. एव्हरीवन मस्ट डिफेंड, इवन अ ब्राह्मण मस्ट डिफेंड, अँड ब्राह्मण शुड एनकरेज द क्षत्रियज सो दॅट अ डिफेन्स सिस्टम इज क्रिएटेड. तर असा हा वारसा, आणि अर्थातच आपल्याला गुरूंची सेवा कशी केली पाहिजे त्याचा वारसा आपल्याकडे आहे. कारण प्रभुपादांनी त्यांच्या उदाहरणातून दाखवून दिलं, हरिनामावर किती श्रद्धा असली पाहिजे तो आपल्याकडे वारसा आहे, किती सखोल शास्त्रांचं अध्ययन केलं पाहिजे तो आपल्याकडे वारसा आहे, हे सगळे वारसे टिकवून ठेवा, परंतु खोटा वारसा की ज्याच्यामध्ये नाही नाही मला ह्याच्याशी काही करायचं नाही, दिस इज पॉलिटिकल, ह्यातून बाहेर या, एवढी एकच सगळ्या भक्तांना नम्र विनंती आहे. मी थोडं काही जास्त बोललो असेल तर मला कृपा करून क्षमा करा, परंतु ह्याच्यावर कोणाला माझ्याशी चर्चा करायची, कोणीही कितीही मोठा लीडर असो, आय एम रेडी टू डिस्कस विथ देम. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण.
खूप खूप धन्यवाद श्रीमान माधवानंद प्रभू. श्रीमान विश्वरूप प्रभू के पश्चात श्रीमान गौरांग प्रभू से निवेदन है कि वो आदरांजलि अर्पण करें.
हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. सबसे पहली बात कि इतनी सुंदर संकल्पना वृंदावन धाम को प्रस्थापित करने की जो है वो श्रील प्रभुपाद की थी, और श्रील प्रभुपाद जी ने ये संकल्पना बहुत पहले कम से कम 50 साल पहले प्रस्तुत की थी, और उनकी ही कृपा से ये संकल्पना हम लोग जी रहे हैं आज. वी आर लिविंग दैट होल कंसेप्ट. मूर्त स्वरूप में हम सब लोग इस कल्पना को अभी अनुभव कर रहे हैं, और ये अनुभव इतना दिव्य है क्योंकि संकल्पना भी इतनी दिव्य थी, इसके कारण ये अनुभव भी इतना दिव्य है. जो जो व्यक्ति पिछले भी 3 हफ्ते से मैं लोगों को मिल रहा हूँ, सब लोग बड़े भाव विभोर होते हैं यहाँ पर आने के बाद. यहाँ का वातावरण, यहाँ के वातावरण की दिव्य चेतना, भक्तों का संग, दिव्य स्थान और प्रसाद और बाकी सारी व्यवस्था, ये सभी क्या कहते हैं उसको, घाउक यानी होलसेल में आध्यात्मिक है, और इसका पूरा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उनके शिष्यों को इतनी तीव्र प्रेरणा दी कि जिसके कारण से 50 साल बाद में क्यों ना हो, ऐसा एक स्थान अभी हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गया है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का शतशः आभार है, धन्यवाद है, और हम उनका ये ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं. लोग 2-2 घंटे में आकर वृंदावन धाम का अनुभव कर रहे हैं. दूसरी बात, मुझे हमेशा सदैव इस बात का आश्चर्य होता है कि प्रभुपाद जी के मंदिर में, खास करके वृंदावन और मायापुर में, आप विदेशी स्त्रियों को देखेंगे इतनी सुंदर तरीके से साड़ी पहनते हैं, पूरा पल्लू लेते हैं, इतना मोटा कुंकू लगाते हैं और तिलक धारण करते हैं. तो मुझे हमेशा ये प्रश्न पड़ता है कि प्रभुपाद जी ने सबसे पहले जो स्त्री को साड़ी पहनना कैसे सिखाया होगा, क्योंकि वो सन्यासी थे. आज भी प्रश्न का उत्तर मिला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम हरे कृष्ण आंदोलन में हम आए, और हमने पहले मायापुर की यात्रा की, बाद में वृंदावन की यात्रा अनंत बार की, मायापुर की यात्रा भी बहुत बार की, तो सब जगह पर एक विशेष दृश्य दिखाई पड़ता है कि विदेशी भक्त पुरुष और स्त्री और उनके छोटे छोटे बालक गोरे गोरे उनके गोद में, वो भी ऐसे मुंडन करके, सिरखा रख के, तिलक लगा के, छोटे छोटे धोती, इतनी धोती पहन के, हाँ, मंगल आरती के समय एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग बैठे रहते हैं, और उसमें से एक दो दो बालक खड़े खड़े अपनी अपनी खुद की आरती भी करते रहते हैं. ये बड़ा चमत्कार है. तो प्रभुपाद जी को जब यहाँ से जाना था, तो जो लोग वहाँ जाके लौट के अयशस्वी होकर आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी आपको ना सूट पहनना पड़ेगा, आपको ना कांटा और चमचे से खाना पड़ेगा, आपको टेबल पर बैठ के भोजन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आप ये प्योर प्योर वैष्णव नहीं कर सकते वहाँ पर, और आपको फिर थोड़ा सा चाय कॉफ़ी लहसुन प्याज का भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लोग नहीं कर सकते, हम जाके आके पूरा करके आए. उनके सीनियर थे वो सन्यासी, और वो आके ऐसा डिस्करेजिंग मैसेज देके चले गए थे. लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ गए, लोगों को धोती पहनना सिखाया, लोगों को जमीन पर बैठकर उंगलियों से खाना खाना सिखाया, तिलक पहनना सिखाया, हाँ क्या नहीं सिखाया. हमारा जो हमारी जो संस्कृति है उसका सर्वोच्च जो स्वरूप है वो उन्होंने वहाँ प्रकट किया, और वो लोग भारत में आकर हमारी संस्कृति का सर्वोच्च आचरण कर रहे हैं. तो ये जो एफर्ट है प्रभुपाद जी का, ये उनकी पवित्रता का परिणाम है. उन्होंने उनकी जो हृदय में पवित्रता थी, हाँ प्रामाणिकता थी, उसका ये परिणाम दिखाई पड़ता है हमको. लेकिन आज ऐसा दुर्दैवी दृश्य हमको दिखता है कि उसी इस्कॉन वृंदावन मंदिर में, उसी इस्कॉन मायापुर मंदिर में जो विदेशी लोग हैं वो पूरे भारतीय वैदिक पर पहराव में रहते हैं, और जो दिल्ली, हरियाणा, आगरा और कलकत्ता से आते हैं वो पूरा जीन पैंट, टाइट टी शर्ट, बाल छोड़ के ऐसे हाँ घूमते रहते हैं। तो ये सब क्या है? क्योंकि हम लोग हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, और जो लोग सब कुछ कर चुके हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और पूरा स्विट्जरलैंड और जर्मनी और बेल्जियम ये सब कुछ छोड़कर वृंदावन मायापुर में परमानेंट रहने के लिए आए हैं, और वही धोती कुर्ता लेकर साइकिल चलाकर धाम में यात्रा करते हैं। तो मेरी लोगों को बहुत हार्दिक विनती है, सारे मेरे कथाओं में ये बात मैं बताते रहता हूँ कि हम लोग वैदिक संस्कृति के देश में जन्म लिए हैं, और यहीं से वो संस्कृति लेकर प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रतिसाद नहीं मिला, ये भी एक दुर्भाग्य है। वहाँ गए, वहाँ के लोगों को प्रेरित किया, यहाँ लेके आए, उन्होंने अपने कल्चर को अपनाया, लेकिन हम लोग अभी भी उस कल्चर को अपनाने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे पास स्कूल का यूनिफॉर्म है, हमारे पास पिकनिक का यूनिफॉर्म है, हमारे पास शादी का एक प्रोटोकॉल है कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन मंदिर में आने का और उत्सव मनाने का कोई ड्रेस कोड नहीं है हमारे पास। मंदिर में भी हम लोग ऐसे ही हाफ पैंट में आते हैं, हाँ कैसे भी आते हैं। एक भगवान का, जैसे प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे तो भी एक ड्रेस कोड होता है, प्रोटोकॉल, वो हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो पूरे विश्व का प्रधानमंत्री है उसके सामने आने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए प्रभुपाद जी की कृपा आवश्यक है। इसलिए मैं सभी हमारे देशवासियों को आह्वान करता हूँ कि प्रभुपाद जी का मैसेज जो है ना वो एक दिव्य आध्यात्मिक मैसेज है, लेकिन वो आध्यात्मिक मैसेज को पालन करने के लिए भी एक डेकोर होना चाहिए, संस्कृति का एक कल्चर का डेकोर होना चाहिए, जो कल्चर के माध्यम से ही वो आध्यात्मिकता का हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो एक होलसम प्रोसेस है, वो केवल भगवान के नाम का जप और चार नियम का पालन नहीं है, वो एक पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन है, वो एक सांस्कृतिक क्रांति है। इस सबको हमको समझना चाहिए, और गर्व से हमें हमारी शिखा पर, हमारे तिलक पर, हमारे धोती पर हमको गर्व होना चाहिए, और हमारे फ्लाइट में, ट्रेन में, रोड पे हमको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए धोती कुर्ता पहनकर जाने के लिए। लोग मजाक भी करें तो उनको उत्तर देने की शक्ति होनी चाहिए। जब तक हमारे कल्चर पर हमको विश्वास नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम ये शर्म करते रहेंगे। जब भी ये ऐसा मौका आएगा पहनने का तो शर्म करते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को आदरांजलि तब होगी उनके तिरुभाव दिवस पर या जन्म दिवस पर, जब हम उनका कल्चर जो है वो होलसम पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे तो हम यशस्वी होंगे। और प्रभुपाद जी का दिया हुआ फॉर्मूला जो है ना वो परफेक्ट फॉर्मूला है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग उसको पालन करने में चूक करते हैं, लेकिन उसको अगर सही तरीके से पालन करेगा तो उसके जीवन में यश, आनंद और मुक्ति, यानी भगवत धाम का गमन, ये निश्चित है, उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। ऐसा महापुरुष बहुत विरल होता है, दुर्लभ होता है, कई सदियों के बाद में ऐसा अवतार लेता है व्यक्ति, और प्रभुपाद जी वो, हमारे प्रभुपाद जी वो व्यक्ति हैं जो ऐसे महापुरुष हैं, मैन ऑफ द मिलेनियम। ऐसी क्रांति किसी ने नहीं की, और एक बिजनेस के रूप में देखा जाए तो भी एक साथ में 12 साल में इतने सारे सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, इतने सारी भाषाओं में, भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में इतने सेंटर्स एक साथ उत्पन्न करना, आज तक कोई बिजनेसमैन ने भी ऐसे ब्रांचेस नहीं खोले एक समय पर, जो प्रभुपाद जी ने केवल 40 रुपया लेके जाकर ये चमत्कार करके दिखाया। बहुत सारे बिजनेसमैन जो करोड़पति वो भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि हाउ ही कुड डू इट। इसी को स्पिरिचुअल पोटेंसी कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, ये कृष्ण शक्ति का परिणाम है। और ऐसे महापुरुष के संबंध में हम है, हमारा उनका संबंध है, हम उनके, वो हमारे दादा गुरु हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। और हमारे जीवन के हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में ये सिद्धांत हमको जीवन में उतारना है, तब जाकर वो शक्ति हमारे अंदर भी आएगी और हम भी थोड़ा बहुत परिवर्तन लोगों के हृदय में ला सकते हैं। मैं प्रभुपाद जी को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, और इनका हमारे ऊपर इतना अनंत ऋण है कि जन्म जन्मांतर भी उनके सेवा करने के पश्चात भी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये हमारा पता नहीं, हमने कोई तपस्या नहीं किया, कुछ किया नहीं, फिर भी इनकी कृपा हमारे पर हुई। ना होते हुए भी इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से ऐसा संग दिया कि जो पिताजी पूरे बचपन में 25 साल तक नहीं समझा सके, वो एक प्रभुपाद जी की साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये किताब पढ़ के हमको समझ में आया। हाँ, दिस इज अ फैक्ट। वो मांसाहार और मछली और ये सब क्यों नहीं करना है, इसके बारे में तो बहस करते रहे हम 25 साल तक। और एक दिन मंदिर गए और उसके बाद में वो किताब ली और पढ़ने के बाद तुरंत सब कुछ त्याग दिया। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल पोटेंसी। और वो शरीर से उपलब्ध नहीं है, उनकी किताब बोल रही है, उसके किताब के माध्यम से ये उपदेश और ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इतनी कन्विंसिंग प्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो आइए हम सब लोग उसका लाभ लें। प्रभुपाद जी की केवल यहाँ पर मूर्ति में बैठने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन में उपस्थित है उनके वाणी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।
बहुत धन्यवाद श्रीमान विश्वरूप प्रभु। श्रीमान गौरांग प्रभु के आदरांजलि के पश्चात पुष्पांजलि होगी।
हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कई भक्तों ने अपने हृदयपूर्वक वक्तव्य श्रील प्रभुपाद जी की स्तुति में प्रस्तुत किए हैं। पिछले कुछ महीनों से मैं गिरिराज महाराज का जो ग्रंथ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ और बड़ा ही रोमांचक विवरण उन्होंने उसमें दिया है। गोवर्धन इको विलेज जो राधानाथ महाराज के दूरदर्शिता के अनुसार हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें और जुहू के उस समय शिला प्रभुपाद जी के मंदिर के निर्माण में कई समान बातें मैं उस ग्रंथ के अंदर देख रहा हूँ। अपने आप को उस स्थिति में रख कर देख रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद जी के ऊपर कितने प्रश्न उठे, कितने भक्तों ने प्रश्न चिन्ह उठाए कि यहाँ पर क्यों, यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है, चलो हम यहाँ से चलें। और कई उन बातों को लेकर महाराज जी ने जो एक एक वर्णन उसमें किया है ये बड़ा ही रोमांचक है। तो उसमें एक जो सिलसिला मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा, और प्रभुपाद जी ने अपने 11 वर्ष के विश्व के भ्रमण के समय केवल 2 बार टेलीफोन इस्तेमाल किया, केवल 2 फोन कॉल मारे 11 साल में। हम लोग 11 मिनट में 20 मार देते। तो जितना कुछ प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का प्रशासन किया इस्कॉन का उस समय, वो सब आज के तारीख में जिसको कहते हैं हम स्नेल मेल पत्र, ओल्ड स्टाइल, और हजारों पत्र प्रभुपाद जी ने लिख दिए। अब ये भी नहीं कि उनके पास बड़े वैदिक सभ्यता और संस्कृति में रचे पचे सभ्य और सुसंस्कृत और अनुशासन पालन करने वाले नए नए लोग जुड़े हुए थे। प्रभुपाद जी जिस उनके बारे में बताया, ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कुड लिव, अर्थात खासकर पाश्चात्य देश के लोगों के अंदर जो किसी भी प्रस्ताव को न स्वीकार करने की जो शैली होती है वो तुरंत व्यक्त कर देते हैं, कुछ अंदर रखते नहीं। तो उन लोगों को एक साथ लाना, एकत्रित करना, उनके बीच समन्वय लाना कितना बड़ा, कितनी बड़ी चुनौती थी। तो एक ऐसे मुद्दा हुआ जून 1972 में, जब कुछ जुहू में उस समय जो भक्तगण, निवासी भक्तगण रह रहे थे, उनके बीच मतभेद हो गया कि किस तरह कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए। सिंपल सा एक्टिविटी था लेकिन मैटर कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया। तो केवल तीन पत्रों के माध्यम से, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, मैटर हो रहा था जूहू में, अब प्रभुपाद जी के पास आज की तारीख में तो जूम कॉल बुला लो और ऑन द स्पॉट जो है जूम में भी झगड़े की सुविधा होती है, जूम में आके कम से कम चिल्लाने का संतोष मिलता है, लगता है कि भाई गाली दिया सामने वाले ने सुना, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी ने केवल पत्र के माध्यम से, वो भी तीन पत्र लिखे, और उसके माध्यम से कैसे मैटर सुलझाए, तो इसको मैं लिख रहा हूँ फोर स्टेप्स ऑन डीलिंग्स हाउ टू क्रिएट कोऑपरेशन। तो पहला स्टेप प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, जो गिरिराज महाराज प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट में 5-7 लोगों ने बगावत कर दिया, कहने लगे बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता नहीं, हमें पता है, ये है वो है, और उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि यहाँ तो कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है, तो मैं करूँ क्या। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा उसका थीम था एक्सेप्ट द सिचुएशन। लीडरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कई भक्तगण बैठे हैं जो अपना अपना कॉन्ग्रीगेशन और कम्युनिटी वगैरह खड़ा कर रहे हैं, तो उनको लगता होगा प्रचार मतलब लेक्चर दो, लोग बड़े प्रसन्न होंगे और निरंतर हार ही पहनाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वास्तविकता कुछ और है। तो यू नीड टू डील द वे प्रभुपाद डेल्ट। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबसे पहले जितने लोग कंप्लेंट कर रहे थे उन सबको पत्र लिखा, रोड टू ऑल ऑफ देम, और फिर प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन बी पुश्ड ओनली बाय कोऑपरेशन, केवल आपसी समन्वय के साथ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा ये एक व्यक्तिगत रूप से मैं इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसको आगे बढ़ाना हो तो सबसे आवश्यक है कोऑपरेशन, समन्वय। इसके लिए जिस व्यक्ति को हमने यहाँ पर इंचार्ज बनाया है उसके साथ आपको कोऑपरेट करना आवश्यक है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं इफ देर इज लैक ऑफ ओबीडियंस देर कैन नॉट बी डिसिप्लिन, अगर कोई आज्ञाकारी न हो तो अनुशासन पालन नहीं किया जा सकता। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट मैनेज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एक विशाल संस्था को संभालने के लिए अनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी प्रभुपाद जी के अधिकांश शिष्य भी 70 वर्ष के ऊपर के आयु के हो गए हैं, लगभग 10 वर्ष के अंदर अंदर पूरे इस्कॉन में सभी जो नेक्स्ट जनरेशन के भक्त लोग एक दूसरे के साथ डील करना है, और लोगों के मन में प्रश्न है कि आगे ये मिशन कैसे बढ़ेगा, कौन किसकी सुनेगा। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट मैनेज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो बिना अनुशासन के संस्था नहीं संभाला जा सकता। फिर प्रभुपाद, ये जून का महीना है और ऐसा भी नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ, प्रभुपाद कहते हैं टिल सेप्टेम्बर डू नॉट मेक एनी फ्रैक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेप्टेम्बर तक आप थोड़ा धीरज रखो और तब तक कम से कम तोड़फोड़ मत करो। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं इफ यू डोंट लाइक द मैन इन चार्ज व्हेन आई रिटर्न आई विल रिप्लेस हिम, अगर आपको व्यक्ति ठीक नहीं लगा तो सितंबर में आने के बाद फिर मैं उनको बदल दूंगा। अगेन फिर प्रभुपाद लिखते हैं फॉर द टाइम बीइंग डू नॉट मेक एनी रैप्चर, इस परिस्थिति में आप कोई इस तरह अलगाववाद मत कीजिए, प्लीज ओबे बाय द डायरेक्शन ऑफ गिरिराज ब्रह्मचारी, और उनकी बात स्वीकार कीजिए। और फिर प्रभुपाद जी, ये फर्स्ट पोर्शन था उनके लेटर का, एक्सेप्ट द सिचुएशन। फिर प्रभुपाद जी ने कुछ हफ्ते बाद एक और लेटर लिखा, तो केवल इतना लिख देना काफ़ी नहीं, उसके ऊपर उन्होंने सुन लिया कार्यवाही कि भाई कई लोग असंतुष्ट हैं। फिर प्रभुपाद जी ने दूसरा क्या किया, सेकंड, द लीडर हैज टू एडजस्ट द रोल्स अकॉर्डिंगली। तो उस समय एक जो व्यक्ति बहुत असंतुष्ट थे प्रभुपाद जी ने उनको गुजरात भेज दिया, फिर एक दूसरे थे जो बहुत रजोगुण से भरे हुए थे उनको गार्डनिंग का इंचार्ज बना दिया, जिससे उनका रजोगुण एंगेज हो जाए। फिर जो दो बच गए जिनको कंस्ट्रक्शन करना था, प्रभुपाद जी ने उनको कहा आपको गिरिराज ब्रह्मचारी के अंडर डायरेक्ट काम करना होगा। फिर उन्होंने देखा कि उनमें से भी कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी ने उनको भी ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने लिखा जो इस कार्य में निपुण है उसको ही ये करना चाहिए। सो प्रभुपाद नॉट ओनली एक्सेप्टेड द सिचुएशन बट ही एडजस्टेड द रोल्स अकॉर्डिंगली, ही टुक एक्शन। अभी आए नहीं हो, वहीं से चल रहा है सब, दूसरा पत्र में इतना सब हो गया। फिर तीसरा पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने, तीसरे पत्र में प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपील। यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू एडजस्ट द रोल्स, नाउ प्रभुपाद इज अपीलिंग। पहला, माई रिक्वेस्ट यू इवन इफ यू डू नॉट अग्री ऑन सम पॉइंट्स, गिरिराज इज इन चार्ज सो प्लीज फॉलो हिज डायरेक्शन। प्रभुपाद ने कहा मैं अपील करता हूं कि कई बातों से आप सहमत नहीं होंगे लेकिन उनको भी हमने इंचार्ज बनाए तो कृपा करके उनकी बात स्वीकार कीजिए। फिर प्रभुपाद ने लिखा दैट विल प्लीज मी। तो ये उन्होंने कह दिया कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसके निर्णय से, उसके विचारों से, उनके मतों से अगर मतभेद हो फिर भी जब तर्क वितर्क प्रयत्न इत्यादि से हम उनकी बात स्वीकार नहीं कर पाते तो एक अंतिम जो प्रयास करना है वो किस आधार पर, ये स्वीकृति श्रील प्रभुपाद जी को संतुष्ट करेगी। दैट एक्सेप्टेंस विल प्लीज श्रील प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद जी का अपील है। तो आज भी उनके तिरुभाव तिथि पे जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है कई परिस्थितियों में कई बातें हम स्वीकार न करें, उचित न लगें, और कई परिस्थितियों में हमको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन मन ही मन हमें इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो संस्था तैयार की है उसमें एक प्रभुपाद जी अनुशासन एक्सपेक्ट करते हैं और उस अनुशासन के लिए जो आवश्यक है वो हमें करना है। मतभेद व्यक्त करने का अपना एक सीमा है, एक प्रक्रिया है, उसको हम समझें, क्योंकि चाहे इस्कॉन में हम कितना भी कार्य, कितनी भी सेवा, कितने भी निर्णय ले लें, अंततो गत्वा जैसे भागवत में कहा है समसिद्धिर हरि तोषणम, उसी प्रकार इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए हम जो कोई भी पराक्रम करें वो किसके लिए, श्रील प्रभुपाद जी के संतोष के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज फॉलो हिज डायरेक्शन दैट विल प्लीज मी। तो ये राधानाथ महाराज भी हमेशा बोलते हैं, तपस्या का यही मूल अर्थ है। फिर प्रभुपाद जी अपील करने के बाद चौथा, हैविंग एक्सेप्टेड द सिचुएशन एडजस्टेड द रोल्स अपील्ड, लेकिन महत्वपूर्ण है कि लीडर को वर्तमान के नकारात्मक परिस्थितियों से भक्तों को भविष्य का एक उज्ज्वल भविष्य निरंतर दिखाना चाहिए। वन हैज टू ऑलवेज कीप शोइंग द फ्यूचर विजन, पॉजिटिव विजन। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं सबसे पहले आई एम वेरी एंक्शियस टू सी द प्रोग्रेस एट द मुंबई सेंटर, I want it to become the first class preaching center in the world. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जुहू को मैं पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ प्रचार केंद्र बनाना चाहता हूँ, वो बताना चाह रहे मेरा भविष्य क्या है। फिर प्रभुपाद कहते हैं Please help me in this ambition. मेरी इस इच्छा में आप मेरी सहायता कीजिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं If we can manage successfully, we will be attract फॉर द होल ऑफ इंडिया। किसी भी संस्था को, मंदिर को चलाने, प्रशासन करने, मैनेजमेंट करने, कई बाधाएं, कई समस्याएं, कई अड़चनें आएंगी, और फिर ऐसी बाधाएं आने पर हो सकता है मन हतोत्साहित हो जाए और हम कहें छोड़ दो इसको, क्यों करें, इतनी तपस्या क्यों करें, क्यों? अगर हम इसे ठीक तरह से मैनेज करेंगे सफलतापूर्वक, इफ यू मैनेज सक्सेसफुली, वी विल बी अट्रैक्टिव फॉर द होल ऑफ इंडिया, हम पूरे भारत भर के लिए आकर्षक हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, आवर टास्क इज वेरी हैवी, हमारा प्रयास बहुत भारी है, डू नॉट नेग्लेक्ट बाय पॉल्ट्री डिसएग्रीमेंट, अब आप इसकी उपेक्षा न कीजिए छोटे मोटे मतभेद को लेकर। आई होप कृष्णा, फिर अंतिम सबसे जो पंच लाइन प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट लेटर के लास्ट लाइन में, आई होप अर्थात मैं आशा करता हूं कृष्णा विल ब्लेस यू, कि कृष्णा आपको आशीर्वाद देंगे, टू अंडरस्टैंड माई हार्ट, जिससे आप मेरे हृदय को समझ सको, अर्थात शिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, गुरु वर्ग के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद का परिणाम क्या है कि हम उनके हृदय को समझ पाते हैं, बाकी कमेंट मारते रहेंगे। तो इसलिए हमको विचार करना है कि हमको किस वर्ग में आना है, केवल यहां वहां की फिजूल बातें करने वालों में, या उस वर्ग में आना है जो गुरु वर्ग की हृदय की इच्छा को समझ सके। ये अपना दिमाग लगा के हम नहीं समझ सकते, दिमाग लगा के दुनिया में बहुत कुछ कार्य हो सकता है, लेकिन गुरु वर्ग के हृदय को समझना हो तो वो उनके आशीर्वाद से ही हम समझ सकते हैं। आई होप कृष्णा विल ब्लेस यू टू अंडरस्टैंड माई हार्ट एंड ओब्लाइज। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी भविष्य का जो उनके संकल्पना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो इसको मैं चार स्टेप्स में इसलिए डिवाइड किया हूँ, हाउ टू डील विथ पीपल सो दैट लीडर्स कैन इंश्योर कोऑपरेशन, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एडजस्ट द रोल्स, अपील टू कोऑपरेट एंड एस्पायर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने तीन पत्रों के माध्यम से उस परिस्थिति में जो कि बहुत नकारात्मक लग रही थी एक परिवर्तन लाया, गिरिराज महाराज को कुछ आशा मिली, परिस्थिति सुधरी, और फिर जब तक श्रील प्रभुपाद आए वो प्रोजेक्ट अपने अगले स्टेज के लिए तैयार था। तो श्रील प्रभुपाद के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि हमें दें जिससे कि हम उनकी इच्छा को भविष्य में और उज्जवल कर सकें, और जैसे कल हमने गोवर्धन पूजा में यहाँ इतने भारी मात्रा में दर्शनार्थियों को देखा, श्रद्धालुओं को देखा, ये एक इस बात का झलक है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज ने श्रील प्रभुपाद के 1970 के न्यू वृंदावन के लिए जो विजन था उसको जो गालतारे में गोवर्धन इको विलेज में यहाँ संपन्न किया, और राधानाथ महाराज के इस संकल्पना को लेकर हम सभी ने उनको बहुत प्रश्न किए और कर भी रहे हैं। तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि किसी भी महान आचार्य और महान भक्तों के स्वप्न को साकार होने में और पूरे विश्व को उसका प्रमाण देने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय आ रहा है, और आशा है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के वचनों के अनुसार अपने कार्य, सेवा, वचन आदान प्रदान अपना कर हम अपने गुरु वर्ग को संतुष्ट करें, भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी हमें आशीर्वाद दें जिससे हम प्रभुपाद जी, राधानाथ महाराज और कई श्रील प्रभुपाद जी के अन्य शिष्यगण जो इस इस्कॉन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कितने बहुमूल्य सूत्र दे रहे हैं, हम उन सूत्रों को समझ सकें, अपना सकें, और इस्कॉन को पूरे विश्व भर में एक अलग स्तर पर ले जाने में सफल हो सकें। श्रील प्रभुपाद जी की ताई गौर प्रेमानंदी।
हरि हरि बोल।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौरांग प्रभु। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि भी मंत्र पुष्पांजलि होगी तो उसके लिए आप खड़े रहेंगे। और सबसे निवेदन है कि जब भी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे तभी जो पुष्पांजलि फेंके नहीं, अपने हाथ में ही रखिएगा 3 बार, और उसके पश्चात ये जो सामने टेबल रखी हुई है उसके ऊपर अर्पण कर सकते हैं। तो सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि जब भी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे तो पुष्पांजलि फेंकिएगा नहीं धरती के ऊपर, हाथ में ही रखिएगा 3 बार, और साथ में ही सामने जो टेबल रखे हुए हैं उस पे आप उसको अर्पण कर सकते हैं।